मट्टू का चेहरा उस समय नाटकीय रूप से बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि रॉकी थंडरहॉक सिटी लेकर आया है। एक पल में ही उसे समझ आ गया कि रॉकी क्या करने की योजना बना रहा था। इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के नाते स्काई सिटी में स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्जेय युद्ध क्षमताएं हैं। रक्षा की दृष्टि से शहर का रक्षात्मक जाल सभी प्रकार के जालों में सबसे शक्तिशाली है। स्काई सिटी का एक छोटा सा रक्षात्मक जाल भी एक पूरे बेड़े की भीषण बमबारी का सामना कर सकता है, जैसा कि माटू और रॉकी के बीच टकराव से देखा जा सकता है। तो रक्षात्मक नेट के अलावा क्या स्काई सिटी में आक्रामक क्षमताएं भी हैं? सचमुच ऐसा ही है। स्काई सिटी के आक्रामक साधन केवल एक तक सीमित हैं, लेकिन यह अंतिम विधि के रूप में जाना जाता है, शहर विध्वंसक तोप। सुपर क्रिस्टल से मैना का उपयोग करके जबरदस्त शक्ति की जादुई ऊर्जा किरण का निर्माण करते हुए ये लक्ष्य पर विनाशकारी प्रहार करता है, वह सिटी डिस्ट्रॉयर तोप जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमला है। शहर विध्वंसक तोप के आगे सारे बचाव बेकार हैं। चूंकि यह तोप सुपर क्रिस्टल से प्राप्त मान से संचालित होती है, जो स्काई सिटी का प्रेरक केंद्र भी है, इसलिए इसमें निहित मान को अंकों या अंकों में नहीं मापा जा सकता, जिससे शहर विध्वंसक तोप की शक्ति का कोई माप नहीं है। आखिरकार एक ही बार में आधे स्काई सिटी को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि शहर विध्वंसक तोप की शक्ति अपार है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट हैं। एक बार इस्तेमाल होने पर स्काई सिटी को चलाने वाला सुपर क्रिस्टल अपना 90% मैना खो देगा और उसे रिचार्ज करना होगा। इस रिचार्ज अवधि के दौरान स्काई सिटी को जमीन पर उतरना होगा और रिचार्ज पूरा होने के बाद ही वह फिर से आसमान में उड़ सकेगा। ये दुष्प्रभाव शहर विनाशक तोप के इस्तेमाल की आवृत्ति को बहुत कम कर देता है। अब जमीन पर राक्षसों का कब्जा है और जमीन पर गिरने वाला एक भी व्यक्ति राक्षसों द्वारा हमला कर देगा, पूरे शहर के वहां उतरने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह भी राक्षसों द्वारा अनिवार्य रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए भले ही शहर विध्वंसक तोप दुनिया में बेजोड़ है, फिर भी कोई भी इसका सही मायने में उपयोग करने का साहस नहीं करता। एक नगर स्वामी होने के नाते मट्टू को नगर विनाशक तोप के अस्तित्व के बारे में जरूर पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉकी इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। नगर विनाशक तोप के इस्तेमाल की जरूरत आमतौर पर तब पड़ती है जब दोनों पक्ष पहले से ही गंभीर रूप से घायल हों और आपसी विनाश के लिए तैयार हों। जाहिर है कि वह और रॉकी उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन उसने रॉकी को कम करके आंका था। माटू के दर्शन में थंडरहॉक शहर आया और उसने अपना रक्षात्मक जाल फैला दिया, लेकिन जल्द ही रक्षात्मक जाल का मन ऊपर की ओर इकट्ठा होने लगा, जिससे शहर के ऊपर एक विशाल जादुई ऊर्जा प्रकाश क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये देखकर माटू सचमुच घबरा गया, क्योंकि यह तोप शहर विध्वंसक तोप दागने का पूर्वाभास था। रॉकी ने सचमुच उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। पागल, ये रॉकी पागल है, आखिर यह क्या करना चाहता है? थंडरहॉक सिटी को सिटी डिस्ट्रॉयर तोप तैयार करते देख माटू एक महिला की तरह उन्मादपूर्ण चीखने लगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह पागल हो रहा है। स्पष्ट रूप से ये रॉकी था। उसके और रॉकी के बीच विवाद की गंभीरता क्या थी? क्या शहर विध्वंसक तोप चलाना जरूरी था? मट्टू रॉकी के इस कदम को समझ नहीं पाया। और तभी रॉकी, जो लंबे समय से अनुपस्थित था, लिलिया के साथ एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। पहले की तरह ही वह तेजी से डिफेंसिव नेट के करीब पहुंच गया। रॉकी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वह रक्षात्मक जाल के पास पहुंचा, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, माटू फिर से उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, रॉकी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा आकाश नगर राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया जाए? माटू ने चिल्लाना बंद नहीं किया, क्रोध से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सचमुच डर गया था शहर विध्वंसक तोप और रॉकी के पागलपन से। 1000 लोगों को सौंप दो या तोप से नष्ट हो जाओ। हालांकि उसकी दहाड़ का सामना करते हुए रॉकी ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया। आप, तुम पागल हो, धमकी, ये तो एक खुली धमकी थी। मट्टू मूर्ख नहीं था, वह भी अंदाजा लगा सकता था कि रॉकी उसे शहर विध्वंसक तोप से धमका रहा है, लेकिन इससे क्या? भले ही रॉकी शहर विध्वंसक तोप का इस्तेमाल सिर्फ धमकी के तौर पर कर रहा हो, लेकिन जब तक 1% नहीं, 1000वें हिस्से के बराबर भी संभावना थी कि रॉकी सचमुच गोली चला सकता है, मट्टू जुआ नहीं खेल सकता था। मट्टू ने कभी शहर विध्वंसक तोप की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना जरूर था। उसके जैसे छोटे से आकाशीय शहर के लिए शहर विध्वंसक तोप का एक ही धमाका उसे गिराने के लिए काफी होता। इसलिए अगर रॉकी के गोली चलाने की थोड़ी भी संभावना होती तो भी वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे में मट्टू ने दांत पीसते हुए कहा, रॉकी, मैं बैरन बोलिन के साथ तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर सकता हूं ताकि तुम उससे निपट सको। वह बेकार है, मुझे लोग चाहिए। 1000 लोग, रॉकी ने बेहद सख्ती से इनकार करते हुए माटू की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया। अब उसे अपने पराजित अधीनस्थ बैरन बोलिन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे माटू शहर की आबादी में ज्यादा दिलचस्पी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रॉकी, मैं तुम्हें 1,000 लोग दूंगा। ये देखकर कि रॉकी स्थिर था, माटू ने अंततः अपने दांत पीस लिए और उस पर चिल्लाया, लेकिन तुम्हें तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाना होगा। स्काई सिटी को मेरा पीछा मत करने देना और बेड़े को मुझे परेशान मत करने देना, वरना मैं अंत तक तुमसे लड़ता रहूंगा। मेरे पास एक सिटी डिस्ट्रॉयर तो भी है। कोई बात नहीं, रॉकी ने स्वाभाविक रूप से माटू की मांगों को एक बार में ही मान लिया, क्योंकि यदि वह 1,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता था तो निश्चित रूप से वह आज्ञाकारी रूप से चले जाएगा और उसके पास माटू के साथ बर्बाद करने के लिए कोई खाली समय नहीं होगा। और उस पर गरजने के बाद माटू सीधे अपने बेड़े को स्काई सिटी वापस ले गया। लगभग 3 से 5 घंटों के भीतर उसके दर्जन भर तो ही जहाज लोगों से भरकर डिफेंसिव नेट से बाहर निकल गए। इस प्रकार रॉकी के बेड़े और माटू के बेड़े ने बीच हवा में ही एक हैंडओवर किया। लगातार 2 हैंडओवर के बाद रॉकी पूरी तरह से लोगों से लदे थंडरहॉक शहर लौट आया। 1,000 लोग, इतनी बड़ी बढ़त की तो रॉकी ने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि वह तो मटू को धमकाने के लिए सिटी डिस्ट्रॉयर तोप का इस्तेमाल कर रहा था। वह असल में गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि वह भी सिटी डिस्ट्रॉयर तोप के भारी दुष्प्रभावों को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी धमकी उसके लिए पक्की जीत थी। अगर माटू नहीं मानता तो ज्यादा से ज्यादा उसकी इज्जत जाती बिना किसी नुकसान के, लेकिन अगर माटू इस धमकी से डर जाता तो रॉकी को बहुत फायदा होता। वास्तविक परिणाम से रॉकी को निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ। उन्होंने न केवल बैरन बोलिन के साथ युद्ध जीता बल्कि माटू से 1,000 लोगों को भी जीत लिया। निस्संदेह टकराव की इस श्रृंखला में सबसे बड़ा विजेता बन गए। इसके विपरीत बैरन बोलिन और माटू इस महान युद्ध में भाग लेने के बावजूद स्वाभाविक रूप से हार गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टकराव में सबसे ज्यादा दुखी बैरन बोलिन नहीं था, जिसने रॉकी से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी थी, बल्कि माटू था जो मदद के लिए आया था। उसने बस बैरन बोलिन के लिए एक काम निपटाया और हजारों लोगों को खो दिया, एक अप्रत्याशित आपदा का शिकार हुआ और यहां तक कि एक को अपने लिए थोड़ा तरस भी आया। बिना किसी स्पष्ट कारण के हजारों लोगों को छीन लिया गया था और माटू इसे हरगिज नहीं जाने देगा। रॉकी से उसकी कितनी दुश्मनी थी ये तो एक बात है, लेकिन बैरन बोलिन तो वह बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। तो जिस रात युद्ध समाप्त हुआ उसी रात बैरन बोलिन को तुरंत पकड़ लिया गया। माटू के अनुसार रॉकी से जो कुछ भी उसने खोया था उसका बदला उसे चुकाना ही था, और अगर वह उसे नहीं चुका पाया तो उसे अपनी जान देकर भी चुकाना होगा। और क्रोधित माटू का सामना करते हुए बैरन बोलिन के बड़े समर्थक बेकार थे, क्योंकि माटू चाहे कितना भी अयोग्य क्यों न हो वह फिर भी एक सिटी लॉर्ड था। दूसरी ओर थंडरहॉक शहर लौट आया रॉकी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। उसने युद्ध जीत लिया था और पूरे 1,000 लोगों को छीन लिया था, वह खुश कैसे न होता। लेकिन नगर के स्वामी के रूप में भले ही वह बहुत खुश थे, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं रह सकते थे, खासकर अब। थंडरहॉक शहर लौटने के बाद उसने तुरंत ओल्ड जैक को, जो शहर में ही रुका हुआ था, बुलाया और उसे अपने साथ लाए नए निवासियों की देखभाल करने को कहा। रॉकी अपने साथ लाए इतने सारे लोगों को देखकर ओल्ड जैक हैरान रह गया और तुरंत काम में जुट गया। उसी समय रॉकी ने एक बार फिर थंडरहॉक सिटी के उड़ान मोड को सक्रिय कर दिया और उस हवाई क्षेत्र से बहुत दूर चला गया जहां अभी अभी महान युद्ध हुआ था। हालांकि रॉकी ने बैरन बोलिन के खिलाफ महायुद्ध जीत लिया था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वह और थंडरहॉक सिटी मेरेंटे परिवार से पूरी तरह अलग हो चुके थे। इसलिए रॉकी को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था ताकि परिवार उस पर कोई बदला न ले सके। हाल ही में हुए हवाई युद्ध में बैरन बोलिन का बेड़ा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था, केवल कुछ टोही जहाज ही माटू शहर की ओर भाग पाए थे। यह एक करारी हार थी, हालांकि विजयी रॉकी को भी भारी नुकसान हुआ था। युद्ध की शुरुआत में रॉकी के बेड़े में 27 युद्धपोत थे, जिनमें से 3 ऑटन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इस तरह कुल 24 युद्धपोत बचे, लेकिन जब वह युद्ध जीतकर थंडरहॉक शहर लौटा तो वह केवल 9 युद्धपोत ही वापस लाया। प्रमुख और अनुरक्षक जहाजों के अलावा केवल 7 तो ही जहाज ही बचे थे। दूसरे शब्दों में रॉकी युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसके बेड़े ने अपने 2/3 से ज्यादा जहाज खो दिए। इसके अलावा प्रमुख जहाज से लेकर अनुरक्षक जहाजों और टोही जहाजों तक लौटने वाले हर युद्धपोत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। एकमात्र सांत्वना ये थी कि प्रमुख और अनुरक्षक जहाज दोनों ही अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। हालांकि ये दोनों बड़े युद्धपोत भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, फिर भी कुछ मरम्मत के बाद वे नए जैसे हो जाएंगे। एक अन्य बिंदु ये था कि थंडरहॉक सिटी की ओर से अपेक्षाकृत कम हताहत हुए थे। ध्यान दें कि यह समग्र रूप से कम हताहत नहीं थे, बल्कि थंडरहॉक सिटी के चालक दल के लिए कम हताहत थे। युद्ध की शुरुआत से ही रॉकी ने चतुराई से काम लिया। उसने थंडरहॉक सिटी के चालक दल को प्रमुख युद्धपोत और एस्कॉर्ट जहाजों पर तैनात किया, जबकि इटर्नल सिटी से किराए पर लिए गए चालक दल को टोही जहाजों पर तैनात किया गया। इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ और दोनों बड़े युद्धपोत अभी भी खड़े थे, थंडरहॉक सिटी के चालक दल को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन किराए पर लिए गए चालक दल को भारी नुकसान हुआ। लेकिन ये तो होना ही था। रॉकी किसी की जान नहीं चाहता था, लेकिन अगर किसी को मरना ही था तो वो खेल बचाने के लिए अपने प्यादों की बलि चढ़ा देता और दूसरों को हार का सामना करने देता। संक्षेप में, इस लड़ाई में रॉकी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए मेरेंटे परिवार से संभावित प्रतिशोध का सामना करते हुए वह केवल उनकी तीक्ष्ण धार से बचने, थोड़ा आराम करने और स्वस्थ होने के बाद दीर्घकालिक योजना बनाने का ही विकल्प चुन सकता था। 3 दिन तेजी से बीत गए और थंडरहॉक सिटी अपनी पूरी रफ्तार वाली उड़ान की बदौलत बहुत पहले ही पिछले हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुकी थी। और हाँ, 3 दिन बाद ओल्ड जैक ने रॉकी द्वारा लाए गए सभी लोगों को ठीक से बसा दिया था। महाराज, यह नए निवासियों के बारे में विस्तृत जानकारी है, कृपया इसे देखें। सिटी लॉर्ड्स हॉल में ओल्ड जैक ने रॉकी को दस्तावेजों का एक मोटा ढेर सौंपा, जो नए निवासियों की सूची बनाने के बाद संकलित किए गए आंकड़े थे। दस्तावेज लेकर रॉकी ने एक पल के लिए उसे पलटा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मट्टू ने उसे जो 1000 लोग दिए थे उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी और उनमें अच्छी खासी संख्या में युवा भी थे। उसे हैरानी हुई जब उसने सोचा था कि मट्टू उसे 1000 बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोग भेजेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। मट्टू ने हर वर्ग का एक एक हिस्सा भेजा था, बुजुर्ग, वयस्क और बच्चे। सच्चाई यह नहीं थी कि मट्टू उदार था, बल्कि सच्चाई ये थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बेशक मट्टू ने शहर के बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों को रॉकी को सौंपने के बारे में सोचा था, लेकिन यह मत भूलिए कि इन लोगों के बच्चे मजबूत और जवान थे। अगर मट्टू इन लोगों के माता पिता को रॉकी को देने के लिए ले जाता तो स्काई सिटी में अराजकता फैल जाती। इसलिए मट्टू के पास सबसे बेकार और अयोग्य लोगों के समूह को रॉकी को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रॉकी को इस दृष्टिकोण से कोई खास सरोकार नहीं था। थंडरहॉक सिटी विकास के शुरुआती दौर में था, लोगों के पास हुनर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वे काम करने और सीखने के लिए तैयार थे, जो उन्हें थंडरहॉक सिटी के लिए मूल्यवान बनाता था। बहरहाल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हालांकि रॉकी ने इस बार अच्छी खासी आबादी हासिल कर ली थी, जिससे थंडरहॉक शहर काफी मजबूत हो गया था, लेकिन इससे कई समस्याएं भी पैदा हुईं। उदाहरण के लिए, थंडरहॉक सिटी एक बार फिर वित्तीय संकट में फंस गई थी। महाराज, हमें अपने राजकोषीय राजस्व को बढ़ाने के तरीके खोजने की जरूरत है। जब ओल्ड जैक ने प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट पूरी कर ली और वित्त अधिकारी एलिन ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। लगातार बढ़ती आबादी के साथ थंडरहॉक शहर पर वित्तीय दबाव मुख्य चिंता का विषय बन गया था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि थंडरहॉक शहर की जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज थी। 2-3 महीने पहले ही उन्होंने बेकहिल विलेज से 1000 लोगों को अपने यहाँ बसाया था। इन नए निवासियों को बसने में मदद करने के लिए रॉकी ने न केवल प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू किया, बल्कि कारखाने भी बनवाए। हालांकि इनके पूरा होने से पहले ही 1000 और लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे थंडरहॉक सिटी की वित्तीय स्थिति गंभीर संकट में पड़ गई। ध्यान रखें कि यद्यपि थंडरहॉक सिटी की जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन उसकी आय में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई थी। नया चमड़ा कारखाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन पहले चरण का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले केवल 1 दर्जन लोग ही वहां काम कर पाए। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद ही बड़ी संख्या में लोग काम पर लग पाए और कारखाना पूरी तरह से चालू हो पाया। इससे पहले थंडरहॉक शहर की आय का मुख्य स्रोत अभी भी कपड़ा उद्योग था, लेकिन बुनाई करने में सक्षम लोग अभी भी शहर के मूल निवासी थे, जिससे आय और व्यय के बीच गंभीर असंतुलन पैदा हो गया था। 1000 से कुछ अधिक लोगों के काम से प्राप्त राजस्व से 3000 की आबादी का भरण पोषण करना था, जो पूरी तरह से असंतुलित था। राजकोष में पैसा कब तक चल सकता है? रॉकी थंडरहॉक सिटी पर पड़ रहे वित्तीय दबाव से अच्छी तरह वाकिफ थे और समाधान ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे। राजकोष में शेष धनराशि और अगली तिमाही के कपड़ा निर्यात को मिलाकर हम अधिकतम 3 महीने तक टिक सकते हैं। केवल 3 महीने? ये जानने पर कि शेष राजकोषीय निधियों और अगली तिमाही के लिए कपड़े की बिक्री से होने वाली आय के साथ भी थंडरहॉक सिटी केवल 3 महीने तक ही टिक सकती है, रॉकी ने अनायास ही अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि इसका मतलब था कि 3 महीने के भीतर उसे राजस्व उत्पन्न करने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा थंडरहॉक सिटी नहीं चल पाएगी। जनसंख्या में अचानक वृद्धि से स्वाभाविक रूप से थंडरहॉक शहर के विकास को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे शहर की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव भी पड़ा। इस दबाव के कारण रॉकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 6 महीने पहले के समय में वापस आ गया है, जब वह हर दिन पैसों की चिंता में बिताता था, और अब भी वही स्थिति है। एलिन, क्या हम खजाने से 50,000 सोने के सिक्के निकाल सकते हैं? जब नियमित काम खत्म हो गए और बाकी सभी लोग चले गए तो रॉकी ने एलिन को पीछे छोड़ दिया और फिर पूछा। 50,000 सोने के सिक्के? सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन रॉकी की बातें सुनकर एलिन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने अभी अभी कहा था कि खजाने में पैसे खत्म हो गए हैं, रॉकी अब उससे पैसे कैसे मांग रहा है? मुझे युद्धपोत की मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता है। रॉकी के मन में वित्तीय संकट को हल करने की एक सामान्य दिशा थी। इस स्तर पर वह जानता था कि थंडरहॉक सिटी पर आत्मनिर्भर होने के लिए निर्भर रहना समस्या का समाधान नहीं था। वह केवल भाड़े के सैनिकों के गिल्ड मिशन पूरे करने या अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए राक्षसों का शिकार करने पर निर्भर रह सकता था, जो कि सबसे व्यवहार्य तरीका था। इसके अलावा उस समय उसके लिए चाहे भाड़े के सैनिकों के संघ के मिशन पूरे करना हो या राक्षसों का शिकार करना, दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गए थे। दो बड़े युद्धपोतों के नेतृत्व वाला एक बेड़ा ही भरोसे के लिए काफी था, और यहां तक कि शून्य जादुई कवचों की संख्या भी एक से बढ़कर दो हो गई थी। ये इस बात की गारंटी थे कि वह विभिन्न कार्यों को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा कर सकता था। लेकिन एक शर्त थी, बेड़े को, जो अभी अभी एक महान युद्ध से गुजरा था, मरम्मत की आवश्यकता थी। जैसा कि पहले बताया गया है, थंडरहॉक शहर के सभी बचे हुए युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अगली लड़ाई में शामिल होना बहुत मुश्किल था और मरम्मत जरूरी थी, लेकिन मरम्मत में पैसा खर्च होता था और वह भी कम नहीं। हालांकि रॉकी के समझाने के तुरंत बाद एलिन ने अपने होंठ फुलाए और अपना सिर हिलाया और तुरंत एक सख्त गृहस्वामी में बदल गई। चलो एलिन, मुझे सचमुच इन पैसों की जरूरत है। 40,000 सोने के सिक्के भी चलेंगे। नहीं, उसका सिर खड़खड़ाहट भरे ढोल की तरह हिल गया। एलिन ने गाल फुलाए और बोली, साहब, अब खजाने में ज्यादा पैसा नहीं बचा है और इतने सारे नए लोग आ गए हैं। मुझे कल खाने का सामान खरीदने के लिए रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करना होगा। आपके युद्धपोत की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? नहीं, उद्धरण चिन्ह .. क्या होगा? 30,000 से काम चल जाएगा। 30,000? ये संख्या सुनकर एलिन ने रॉकी की ओर देखा, कुछ देर सोचा और अंततः कहा, केवल 30,000, एक पैसा भी अधिक नहीं। सौदा, रॉकी ने हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। दोनों के बीच की यह बातचीत थोड़ी अजीब लग रही थी। रॉकी शहर का सरदार होने के नाते एलिन से इतनी विनम्रता से पैसे कैसे मांग सकता है? लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे तो वह गलत होगा। रॉकी असल में एलिन की राय ले रहा था, क्योंकि वही वित्तीय मामलों की बागडोर संभालती थी। जरा सोचिए, अगर एलिन ने मानते ही उसे पैसे दे दिए तो थंडरहॉक शहर कैसे चलेगा? कौन सुनिश्चित करेगा कि शहर का वित्तीय कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे? इसके बाद एलिन भी जाने की तैयारी करने लगी। शहर में 1,000 अतिरिक्त लोगों के साथ वित्त अधिकारी होने के नाते उसे तुरंत रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करके खाना और दूसरी जरूरी चीजें खरीदनी थी। वह बहुत व्यस्त थी। लेकिन एलिन को जाते देख रॉकी को अचानक कुछ याद आया और उसने आवाज लगाई, एलिन, रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लिंग्यू सिटी में सीधे हमसे मिलने दो। आप लिंग्यू शहर जा रहे हैं? ये सुनकर लिलिया, जो रॉकी के पास थी, ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अब मैं सिर्फ लिंग्यू शहर जा सकता हूँ। इटर्नल सिटी में व्यापार कर बहुत महंगा है, हमें जहाँ तक हो सके बचत करनी होगी। इसके अलावा इटर्नल सिटी जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मेरेंटे परिवार के लोगों के लिए हमें ढूंढना आसान है। रॉकी ने अपने अगले कदम के बारे में बहुत सोच विचार किया था, न सिर्फ इटर्नल सिटी में लगने वाले भारी व्यापार कर के बारे में, जिसे वह वहन नहीं कर सकता था, बल्कि मेरेंटे परिवार की ओर से संभावित प्रतिशोध को भी ध्यान में रखते हुए। इसलिए उसने लिंग्यू सिटी को अपना अगला निशाना बनाया। हालांकि लिंग्यू शहर भी एक छोटा सा आकाशीय शहर था, लेकिन ये भी व्यापार पर केंद्रित एक शहर था। इसके नगरपाल बर्ग रॉकी से पहले भी कई बार मिल चुके थे, इसलिए मरम्मत के लिए वहां जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। उनकी सोच स्पष्ट रूप से सही थी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, मेरेंटे परिवार ने वास्तव में प्रतिशोध की तैयारी शुरू कर दी थी। अत्ते, परिवार ने अभी तक सेना क्यों नहीं भेजी? तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? मशीन सिटी के सिटी लॉर्ड के भवन के अंदर मेरेंटे परिवार के बुजुर्गों की एक बैठक के दौरान लेक्सिंगटन ने कबीले के नेता अत्तेड को गुस्से से देखा और उनसे सैनिकों की तैनाती में हो रही देरी के बारे में पूछा। विशाल मेरेंटे परिवार में कुल 10 बुजुर्ग थे। इन 10ों में लेक्सिंगटन वास्तव में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, जिसका अधिकार और शक्ति कुल नेता अत्तेड के बराबर थी। इस प्रकार वह जिस गुट का प्रतिनिधित्व करता था, वह हमेशा अत्तेड के गुट के साथ संघर्ष में रहता था और यहां तक कि अत्तेड को भी, जो कि कबीले का नेता था, उसके साथ व्यवहार करते समय अत्यंत सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन इस बार गुस्से से भरे लेक्सिंगटन का सामना करते हुए अत्तेड आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेक्सिंगटन के आक्रामक सवालों पर उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़े लेक्सिंगटन, परिवार को सेना क्यों भेजनी चाहिए? जाहिर है, विद्रोही को सजा देने के लिए। रॉकी ने खुलेआम परिवार के आदेशों की अवहेलना की और परिवार में आंतरिक कलह भी भड़का दी। कुल नेता होने के नाते क्या आप चुपचाप बैठकर ऐसे विद्रोह को नजरअंदाज करने का इरादा रखते हैं? लेक्सिंगटन ने गुस्से से एटिड की ओर आंखें फाड़कर देखा और स्वाभाविक रूप से रॉकी और बैरन बोलिन के बीच लड़ाई का जिक्र किया। इस लड़ाई को समाप्त हुए एक सप्ताह हो चुका था और बैरन बोलिन पहले ही परिवार के पास लौट चुके थे, हालांकि इसके लिए उन्हें फिरौती देनी पड़ी थी। बुरी तरह क्षतिग्रस्त माटू ने बैरन बोलिन को पकड़ लिया था और उसे बंधक बना लिया था तथा उसके परिवार से मुआवजे के रूप में फिरौती की मांग की थी, जिससे हंगामा मच गया था। और चूंकि बैरन बोलिन एक कुलीन थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका अपना छोटा परिवार था। लेकिन माटू की अत्यधिक मांगों के कारण उनका छोटा परिवार फिरौती नहीं दे सकता था। अंततः मामला अभी भी माइरेंटे परिवार पर ही निर्भर था। उन्होंने बैरन बोलिन को माटू से छुड़ाने के लिए पूरे 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। ये घटना मैरेंटे परिवार के लिए और उससे भी ज्यादा लेक्सिंगटन के लिए एक शर्मनाक घटना थी, क्योंकि बैरन बोलिन उनके अधीनस्थ थे। युद्ध में बोलिन की हार ने न केवल उन्हें शर्मिंदा किया बल्कि लेक्सिंगटन की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैरन बोलिन को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए 5 लाख सोने के सिक्के ऊपरी तौर पर मैरेंटे परिवार से आए थे, लेकिन वास्तव में ये लेक्सिंगटन था जिसने भुगतान किया था। लेक्सिंगटन के लिए 5 लाख सोने के सिक्के कोई बड़ी रकम नहीं थे, लेकिन वह इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देना चाहता था। इसका उसकी निजी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर वह अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सका तो पूरे परिवार में उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। लेकिन उसके सारे विचार अत्तेड की नज़र से बच नहीं सकते थे। विवाद में एक पक्ष होने के नाते अत्तेड हरगिज लेक्सिंगटन के पक्ष में नहीं जाने देगा। लेक्सिंगटन, बैरन बोलिन की विफलता के कारण परिवार को पहले ही 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी की अयोग्यता के कारण परिवार के बाकी सदस्यों को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़े? मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे कि उन्हें एक्टिव की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश का अंदाजा हो गया था, लेक्सिंगटन ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस मामले को सुझाने के लिए अपना बेड़ा भेजूंगा। मुझे बस परिवार की मंजूरी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित अन्य बुजुर्गों, यहां तक कि कबीले के नेता अत्तेड ने भी उसकी ओर गहरी नजर से देखा। पूरे मैरेंटे परिवार में भी लेक्सिंगटन को एक शक्तिशाली खिलाड़ी माना जा सकता था। उसके पास एक विशाल स्काई सिटी थी और उसके पास कम से कम 5 बेड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में 100 से ज्यादा युद्धपोत थे। 5 बेड़े यानी 500 से ज्यादा युद्धपोत। और ये 500 युद्धपोत सिर्फ टोही जहाज नहीं थे। लेक्सिंगटन के बेड़े में टोही जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ टोही के लिए होता था। मुख्य बल असली बड़े युद्धपोतों से बना था और कम से कम अनुरक्षक जहाजों से। यह एक बड़े स्काई सिटी लॉर्ड की ताकत थी। इस प्रकार एक बार जब लेक्सिंगटन ने अपने बेड़े भेज दिए तो केवल एक भेजना भी थंडहॉक शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। पुनश्च आज मैंने कई पाठकों की टिप्पणियों का जवाब दिया। जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे देख सकते हैं। आपको पुस्तक की दिशा और कुछ प्रश्न समझ में आ जाएंगे। साथ ही मैं सुझाव भी मांग रहा हूँ, कृपया सुझाव दें। जब लेक्सिंगटन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि परिवार सहमत हो तो वह अपने बेड़े को थंडहॉक सिटी के स्तर पर रखेगा, तो अन्य सभी बुजुर्गों ने तुरंत अत्तेड की ओर देखा। दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में सभी जानते थे और समझते थे कि अत्तेड को थंडहॉक सिटी बैरन बोलिन को देने के लिए मजबूर किया गया था। अब जबकि बैरन बोलिन असफल हो गए थे, उन्हें यकीन था कि अत्तेड लेक्सिंगटन के लिए काम आसान नहीं करेगा। जैसी की उम्मीद थी, अत्तेड इसके बाद चुप हो गए और अंत में बोलने से पहले उन्होंने कुछ समय लिया। मुझे याद है कि आधे साल पहले ही रॉकी को परिवार से निकाल दिया गया था, इसलिए अब उसे परिवार का गद्दार कहना मुझे लगता है कुछ हद तक अनुचित है। बोलते हुए अत्तेड ने धीरे से अपनी नज़र लेक्सिंगटन की ओर घुमाई। उन्होंने कहा, लेक्सिंगटन, परिवार को इस मामले पर विचार करने दीजिए। इसमें विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेक्सिंगटन ने तुरंत जवाब दिया। चूंकि रॉकी अब परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए ये सही है। मुझे अभिनय करने के लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मैं परिवार के क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, है ना? लेक्सिंगटन को पता था कि अटिट क्या योजना बना रहा है, वह इसे टालना चाहता था, इसलिए उसने उसी के अनुसार जवाब दिया। चूंकि रॉकी अब परिवार का हिस्सा नहीं था, इसलिए वह विस्तार के बहाने परिवार की मंजूरी के बिना ही अपनी सेना भेज सकता था, क्योंकि वह अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा था। प्रारंभ में रॉकी के इर्द गिर्द केंद्रित चर्चा अब स्पष्ट रूप से मैरेंटे परिवार के भीतर एक आंतरिक टकराव में बदल गई थी, जो लेक्सिंगटन और अटिट के बीच सत्ता संघर्ष के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही थी। लेक्सिंगटन की बात खत्म होते ही अटिट मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन चूंकि यह परिवार की बात है, इसलिए हम तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दे सकते। आखिरकार रॉकी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हम और ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते। मुझे लगता है कि हमें परिवार के नाम पर सेना भेज देनी चाहिए। सब क्या सोचते हैं? मान गया, अनुमत। अत्तेड के प्रस्ताव के तुरंत बाद उपस्थित आधे से अधिक बुजुर्गों ने अपनी सहमति व्यक्त की तथा प्रभावी रूप से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेक्सिंगटन स्वाभाविक रूप से क्रोध से भर गया। उन्हें क्रोधित होना ही था, क्योंकि अट्टिड के प्रेरक भाषण में विस्तार के लिए थंडहॉक सिटी को लक्ष्य बनाने की सहमति तथा यहां तक कि परिवार के नाम पर लामबंदी का सुझाव देने के बावजूद किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि लेक्सिंगटन स्वतंत्र रूप से कार्य करता तो वह बैठक के तुरंत बाद अपने बेड़े को भेज सकता था। लेकिन अगर सेना भेजने का फैसला परिवार का होता तो मामला पेचीदा हो जाता। कौन जाने अत्तेड और उसके लोग कब सेना तैयार कर पाएंगे, एक दिन में, एक महीने में या एक साल में भी, कोई नहीं जानता था। इसलिए समर्थक प्रतीत होने के बावजूद अत्तेड प्रभावी रूप से लेक्सिंगटन को रोक रहा था। और हालांकि लेक्सिंगटन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसका गुट भले ही परिवार में ताकतवर रहा हो, लेकिन कबीले के नेता के रूप में अत्तेड की स्थिति ने साबित कर दिया कि उसे बहुमत का समर्थन हासिल है। इसलिए जब कबीले के नेता के रूप में अत्तेड ने ऐसा फैसला लिया तो लेक्सिंगटन अपनी असंतुष्टि के बावजूद उसका पालन करने को तैयार हो गया। ऐसी परिस्थिति में लेक्सिंगटन बैठक समाप्त होने से पहले ही गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी। जिस तरह बैरन बोलिन ने मट्टू को मदद के लिए ढूंढ निकाला था, अगर लेक्सिंगटन मदद मांगता तो परिवार के बाहर के कई सिटी लॉर्ड्स भी उसकी मदद के लिए तैयार रहते। इसलिए उसने रॉकी से निपटने के लिए दूसरे सिटी लॉर्ड्स की मदद लेने की योजना बनाई। उसके जाते ही पारिवारिक बैठक भी समाप्त हो गई। कुल प्रधान अत्तेड शांति की तलाश में अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया, लेकिन जैसे ही वह बैठा कोई उसे ढूंढता हुआ आया। पिता, अध्ययन कक्ष की दहलीज पर खड़े होकर सिरिल ने कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाया। अपनी बेटी की ओर देखते हुए अत्तेड ने एक गहरी सांस ली और फिर वह किताब बंद कर दी जो उसने अभी अभी खोली थी। क्या तुम रॉकी मामले के बारे में मुझसे मिलने आए हो? हाँ, कब से इतना बड़ा परिवार एक बहिष्कृत व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा? चूंकि निर्वासित व्यक्ति के पास शतरंज के खेल को बाधित करने की शक्ति थी, सिरिल ने अपने पिता के सामने खड़े होकर गर्व के साथ कहा। लेक्सिंगटन के प्रतिशोध को मैंने रोक दिया है, अत्तेड ने असहाय भाव से सिरिल की ओर देखा, फिर बैठक का निर्णय सुनाया। हालांकि रॉकी अभी भी सुरक्षित नहीं है और लेक्सिंगटन निश्चित रूप से उसे परेशान करने के लिए अन्य सिटी लॉर्ड्स की तलाश करेगा, इसलिए आपको उसे इसके लिए तैयार करना होगा। एक पिता के रूप में अत्तेड सिरिल और रॉकी के बीच के संबंध से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन उसकी नज़र में रॉकी इतना महत्वहीन था कि वह उस पर ध्यान नहीं दे सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि अब ये बात उसके लिए उपयोगी साबित हुई। हालांकि जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो सिरिल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने एक और मामला उठाया। पिताजी, मुझे लगता है कि परिवार को आधे साल पहले लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आधे साल पहले? तुम्हारा मतलब है रॉकी को परिवार में वापस लाना? बिल्कुल, 6 महीने में एक अकेले व्यक्ति ने द एबंडन सिटी में बैरन बोलिन को हरा दिया, जिससे ये साबित हो गया कि उसके पास परिवार में जगह बनाने की ताकत है। दरअसल जब सिरिल को पता चला कि रॉकी ने बैरन बोलिन को हरा दिया है तो उसे भी किसी और की तरह यकीन नहीं हुआ, और इसलिए उसने उस महान युद्ध के बारे में गहराई से छानबीन की। जैसे जैसे उसे युद्ध के बारे में पता चला वह उतनी ही हैरान होती गई। एक बेड़े के शीर्ष पर एक प्रमुख जहाज, 0 जादू कवच के 2 सेट और 2000 लोगों का शहर, नहीं अब 3000। इन सब बातों से सिरिल को लगा कि उसे जो जानकारी मिली है उसमें जरूर कोई गलती होगी। क्या ये वाकई रॉकी के बारे में बात कर रहा था? फिर भी कई जांच पड़ताल के नतीजों के सामने सिरिल को मानना पड़ा कि उसने पहले रॉकी को कम करके आंका था। इससे पहले रॉकी की मदद करने की उसकी वजह काफी हद तक अपराध बोध था, लेकिन अब बात अलग थी। रॉकी ने अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सिरिल को उसे गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए सिरिल ने अत्तेड के सामने रॉकी को परिवार में वापस लाने का सुझाव रखा। इसका व्यक्तिगत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसने सोचा कि रॉकी को परिवार में वापस लाना उसके और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। असंभव, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि वह अपने कारणों को विस्तार से बता पाती, अत्तेड ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से मना कर दिया। पिताजी, क्यों? क्या ये लेक्सिंगटन की वजह से है? अत्तेड के सहज इनकार से सिरिल बहुत हैरान हुआ। लेक्सिंगटन की वजह से नहीं, अत्तेड ने अपनी बेटी की ओर सिर हिलाया और धीरे से कहा, ये केली की वजह से है। अपने पिता की बातें सुनकर सिरिल, जो कुछ हद तक उलझन में थी और नाराज भी थी, तुरंत चुप हो गई। मैरेंटे परिवार में वर्तमान में 3 गुट थे, एक का नेतृत्व अत्तेड करता था, दूसरे का लेक्सिंगटन करता था और तीसरे का केली करता था। इन गुटों में अत्तेड और लेक्सिंगटन के गुट ताकत में बराबरी पर थे और हमेशा कबीले के नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इसके विपरीत केली का गुट कमजोर होते हुए भी सबसे निर्णायक भूमिका निभाता था। चूंकि अत्तेड और लेक्सिंगटन के गुट हर पहलू में लगभग बराबर थे, इसलिए केली के गुट का समर्थन पाने वाला कोई भी व्यक्ति प्रमुखता हासिल कर सकता था। उदाहरण के लिए अत्तेड अब कबीले के नेता के पद पर इसलिए बैठ पाया क्योंकि उसे केली के गुट का समर्थन हासिल था और उनके समर्थन का कारण रॉकी से जुड़ा था। सिरिल, तुम्हें पता होना चाहिए कि रॉकी का मध्यम आकार का स्काई सिटी पहले से ही केली के हाथों में है। अगर हम उसे परिवार के पास वापस बुलाएं तो वह क्या सोचेगा? केली क्या सोचेगी? हम अभी केली का समर्थन नहीं खो सकते, इसलिए भविष्य में इस मामले पर फिर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन पिताजी, अगर हम रॉकी का समर्थन नहीं करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है कि वह लेक्सिंगटन के प्रतिशोध से बच सके। ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी बेटी की ओर देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से चिंतित थी, अत्तेड ने मुश्किल से ही मुस्कुराहट दिखाई। सिरिल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार लेक्सिंगटन कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो रहा है?
उत्तेजित,
अत्तेड ने उत्तर दिया। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अधिक है, ये सामान्य नहीं है। बातचीत के बीच में अत्तेड धीरे से उठा, फिर खिड़की के सामने खड़ा हो गया और खिड़की से नीले आसमान को निहारने लगा। वह काफी देर तक देखता रहा। अत्तेड अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी का थोड़ा सा भी असामान्य व्यवहार उसकी नज़र से बच नहीं सकता था, और यह अवसर भी कोई अपवाद नहीं था। इसलिए कुछ देर तक आसमान की ओर देखने के बाद अत्तेड ने अपना सिर घुमाकर सिरिल की ओर देखा। मुझे शक है, लेक्सिंगटन को शायद कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, या तो रॉकी से या थंडहॉक सिटी से संबंधित, इसीलिए वह इतना उत्तेजित है। रॉकी, तुम अंततः यहाँ आ गए। लिंग्यू शहर की ओर जाने का निर्णय लेने के बाद रॉकी ने लिंग्यू शहर के नगर स्वामी बर्ग से संपर्क किया, जिनके साथ उसने अनंत शहर छोड़ते समय संचारकों का आदान प्रदान किया था, जिससे वे संपर्क में रह सकें। इसलिए जब रॉकी वास्तव में लिंग्यू शहर पहुंचा तो बर्ग उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही बंदरगाह पर मौजूद था। बर्ग को देखकर रॉकी स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। आखिरकार दूसरा पक्ष भी उसी की तरह एक सिटी लॉर्ड था, और इस बार वह वास्तव में बर्ग से एक एहसान मांग रहा था, इसलिए निश्चित रूप से उसे विनम्र होना पड़ा। बर्ग, तुम्हारा लिंग्यू शहर तुम्हारे वर्णन से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये जगह एक लघु शाश्वत शहर बन जाएगी। हे हे, क्या यह एक मिनी अनंत शहर बन सकता है या नहीं, यह अभी भी आपकी देखभाल पर निर्भर करता है। कृपया अंदर आइए। रॉकी के साथ औपचारिक और मैत्रीपूर्ण हाथ मिलाने के बाद बर्ग ने उसे एक बड़ी गाड़ी में आमंत्रित किया जो पहले से तैयार थी, और उसे अपने सिटी लॉर्ड के भवन में ले गया। रॉकी, तुमने सचमुच एक खूबसूरत लड़ाई लड़ी। गाड़ी में बैठते हुए रॉकी के बोलने से पहले ही बर्ग ने उत्साहित होकर कहा, मैंने सुना है कि तुमने मैरेंटे परिवार के बेड़े में से एक को नष्ट कर दिया है, ये प्रभावशाली है। बर्ग, आप हमेशा इतने जानकार कैसे रहते हैं? बर्ग की ओर देखते हुए, हालांकि रॉकी को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दूसरे पक्ष को उसके मामलों के बारे में पता था, फिर भी वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। तुमने इतनी शानदार लड़ाई जीतने के बाद क्या सचमुच सोचा था कि तुम इसे छिपा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ मुझे ही नहीं पता, उस क्रूर महिला करीना और कई अन्य सिटी लॉर्ड्स ने भी इसके बारे में सुना है। वे भी जानते हैं, छाया गठबंधन के माध्यम से। रॉकी ने बर्ग की ओर देखा और संकोच से पूछा, बेशक, ये और किसके माध्यम से हो सकता है? हंसते हुए बर्ग ने अपना सिर हिलाया। रॉकी ने पहली बार करीना से शेडो अलायंस के बारे में सुना था, लेकिन क्योंकि कई और बातें थीं, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की थी। अब उसे लग रहा था कि यह शेडो अलायंस वाकई बहुत ताकतवर है। उसके और बैरन वोलिन के बीच की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी, और इस शेडो अलायंस ने उसे पहले ही उजागर करके फैला दिया था। वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि छाया गठबंधन आकाश में सबसे बड़ा खुफिया संगठन था। ये गठबंधन भाड़े के सैनिकों के संघ जैसे संगठनों से अलग था, हालांकि यह बड़ा था लेकिन कोई सार्वजनिक संगठन नहीं था। जैसा कि इसके अस्पष्ट नाम से पता चलता है, हर कोई इसके अस्तित्व के बारे में जानता था लेकिन इसे देख या छू नहीं सकता था। अगर कोई संपर्क करना चाहता था तो वह केवल एक निर्दिष्ट तरीके से ही ऐसा कर सकता था, और फिर यह छाया गठबंधन रहस्य में लिपटे हुए सक्रिय रूप से आपसे संपर्क करता था। हालांकि शेडो अलायंस की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता वाकई जबरदस्त थी। अगर कोई 10,000 स्वर्ण सिक्के प्रति माह देता तो आसमान में होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण या छोटी घटना, जो भी उल्लेखनीय हो, आमतौर पर उनके द्वारा एकत्र की जाती और उनके सभी ग्राहकों तक पहुंचाई जाती। ऐसी परिस्थितियों में रॉकी और बैरन वोलिन के बीच महान लड़ाई स्वाभाविक रूप से शेडो अलायंस द्वारा भी एकत्र की गई और विभिन्न ग्राहकों को दे दी गई। दरअसल रॉकी का अभी भी आकाश में मौजूद दूसरे शहरों से बहुत कम संपर्क था, इसलिए उसे नहीं पता था कि बैरन वोलिन के साथ उसकी लड़ाई असल में किस स्तर की लड़ाई थी। दरअसल उनकी हवाई लड़ाई पहले से ही छोटे आकाशीय शहरों के बीच एक बेहद दुर्लभ बड़ी लड़ाई मानी जाती थी। आमतौर पर यदि दो छोटे स्काई सिटीज के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो प्रत्येक पक्ष केवल कुछ युद्धपोतों को तैनात करेगा, और यदि दोनों पक्षों द्वारा तैनात युद्धपोतों की संयुक्त संख्या 20 से अधिक हो तो इसे एक बड़ी लड़ाई माना जा सकता है। हालांकि रॉकी और बैरन वोलिन के बीच हुए युद्ध, जिसमें एक साथ 50 से अधिक युद्धपोत तैनात किए गए थे, को छोटे स्काई सिटीज के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध भी माना जा सकता है। इस तरह के युद्ध के पैमाने को स्वाभाविक रूप से छाया गठबंधन द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसलिए जब सब कुछ शांत हो गया तो खबर तेजी से फैल गई, जिसमें रॉकी द्वारा बैरन वोलिन को हराने और माटू शहर से 1,000 लोगों को ले जाने की घटनाएं शामिल थीं। इस प्रचार के बाद रॉकी अनजाने में ही कुख्यात हो गया। स्काई सिटी के कई छोटे मोटे सरदारों ने उसका नाम लिया और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया जिसे उकसाया नहीं जा सकता और जो अलोकप्रिय है। इसमें कोई मदद नहीं थी, उसके बेड़े ने कई कमजोर छोटे नगर स्वामियों को आशंकित कर दिया था और माटू के प्रति उसके कार्यों ने, खासकर माटू के 1,000 लोगों को लूटने के कृत्य ने, कई कमजोर नगर स्वामियों में भय पैदा कर दिया था। उनमें से कुछ ने तो उसकी लोकेशन पर नजर रखना भी शुरू कर दिया था और उससे दूरी बनाए रखने की तैयारी कर ली थी। क्या यह इतना गंभीर है? हाहा, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? जब बर्ग ने ये जानकारी रॉकी को दी तो रॉकी खुद भी हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक हवाई लड़ाई उसे अचानक मशहूर बना देगी, बदनाम तो दूर की बात है। वह ये नहीं समझ पाया कि कई स्काई सिटी लॉर्ड्स, खासकर छोटे स्काई सिटीज के लॉर्ड्स, ज्यादातर माटू जैसे ही थे, महत्वाकांक्षाओं से रहित और बस अपनी छोटी सी जिंदगी जीने में मशगूल। रॉकी जैसे सिटी लॉर्ड्स, जो रोजाना यही सोचते थे कि अपने शहरों को कैसे मजबूत करें और अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं, असल में अल्पसंख्यक थे। इसलिए जो उसे साधारण लगता था वह दूसरे सिटी लॉर्ड्स को असामान्य लगता था। उदाहरण के लिए, रॉकी को ये बात बिल्कुल जायज लगी कि उसने मट्टू से 1,000 लोगों को छीन लिया था। क्या मट्टू ने बैरन बोलिन को उस पर हमला करने में मदद नहीं की थी, और हारने के बाद क्या उसे युद्ध में लूटे गए कुछ माल का हक नहीं मिलना चाहिए? उसने सोचा कि यह तरीका सही था, फिर भी अन्य सिटी लॉर्ड्स की नज़र में इस दृष्टिकोण ने उसे एक महत्वपूर्ण युद्ध अपराधी बना दिया, क्योंकि उसकी ताकत और कार्यों ने उन्हें बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। ये वह बिंदु था जिस पर रॉकी ने विचार नहीं किया था और वह इससे सहमत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि करीना को आप पसंद आ गए, पता चला कि आप दोनों एक जैसे हैं, हो। जैसे ही रॉकी ने हार मान ली, बर्ग ने उस पर दिल खोलकर हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। इस टिप्पणी ने रॉकी को चौंका दिया। अचानक बात करीना पर कैसे आ गई? उसकी उलझन देखकर बर्ग को अचानक एहसास हुआ और उसने अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा, मैं भूल गया, तुम अभी अभी करीना से मिले हो और इसलिए नहीं जानते कि वह किस तरह की इंसान है ना? कैसी इंसान? क्या वह वाकई खूबसूरत नहीं है? बर्ग को देखकर रॉकी ने करीना के बारे में अपनी राय साझा की। उसे करीना वाकई बहुत खूबसूरत लगी, सिर्फ चेहरा ही नहीं। अगर तुलना करनी हो तो वह और लिलिया कुछ हद तक एक जैसी लग रही थी, दोनों में एक बेबाक और बेकाबू आकर्षण था। तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बर्ग ने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर ली। रॉकी, ये बातें अपने तक ही रखो। अगर करीना ने सुन ली तो शायद वो तुम्हें नपुंसक बना देगी। फिर उसने रॉकी के कंधे पर गंभीरता से थपथपाते हुए कहा, रॉकी, इसे भाई की चेतावनी समझो, सावधान रहना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास भी बहुत सी सुंदरियां हैं, तुम्हारा गार्ड, वित्त अधिकारी और वह छोटा सा जानवर, सभी कुछ खास हैं, इसलिए करीना के बारे में कोई भी विचार मत करो। रोज सिटी का तानाशाह यूं ही नहीं कहा जाता, इस गुलाब के कांटे इतने तीखे हैं कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी। बर्ग के शब्दों ने रॉकी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। रोज सिटी का तानाशाह? क्या वह करीना के बारे में बात कर रहा था? रॉकी ने करीना को सिर्फ 2-3 बार देखा था और हालांकि करीना ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, ये कहना कि वे एक दूसरे को समझते थे बहुत दूर की बात होगी। इसलिए करीना के बारे में बर्ग का आकलन सुनकर रॉकी स्वाभाविक रूप से हैरान था। हालांकि यह आश्चर्य केवल विस्मय तक ही सीमित रहा और इससे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि रॉकी को भी नहीं पता था कि वह करीना को दोबारा कब देख पाएगा, इसलिए अधिक गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने और बर्ग ने मुख्य मुद्दे पर चर्चा की, जो युद्धपोत की मरम्मत से संबंधित था। बर्ग, जो कि समझदार था, ने रॉकी के इरादे पहले ही भांप लिए थे और लिंग्यू शहर में वाकई एक गोदी थी जो युद्धपोत की मरम्मत का काम कर सकती थी। ऐसे में दोनों में तुरंत ही अच्छी बन गई, जिससे रॉकी का मन शांत हो गया। ये जानने पर कि लिंग्यू शहर में एक गोदी है, रॉकी अपने बेड़े को मरम्मत के लिए वहां ले गया, जिसमें लगभग आधा महीना लग सकता था। लागत भी उचित थी। बर्ग ने गोदी के मालिक से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और मरम्मत शुल्क को 50,000 से घटाकर 35,000 स्वर्ण मुद्राएं करवाने में कामयाब रहा। हालांकि यह हेलिन द्वारा रॉकी को दी गई राशि से थोड़ा ज्यादा था, फिर भी थंडहॉक शहर के बजट में था। जहां तक रॉकी की मदद करने की बर्ग की उत्सुकता का सवाल है, तो यह उनके बीच गहरी दोस्ती के कारण नहीं था, बल्कि एक तरह का निवेश था। बर्ग की नज़र में, हालांकि रॉकी उसकी तरह एक छोटे से स्काई सिटी का स्वामी था, उसकी क्षमता निस्संदेह बहुत बड़ी थी। दरअसल बैरन बोलिन के साथ रॉकी की लड़ाई के बारे में सुनने के बाद, बर्ग ने दूसरे नगर स्वामियों की तरह शैडो अलायंस से रॉकी के बारे में एक विस्तृत दस्तावेज हासिल किया। शैडो अलायंस का ये डोजियर काफी विस्तृत था। इसमें रॉकी के साथ घटी हर महत्वपूर्ण घटना का विवरण था, अपने पिता के मध्यम आकार के स्काई सिटी के उत्तराधिकार से लेकर बैरन बोलिन के साथ उसकी लड़ाई तक। इसमें मैरेंटे परिवार के साथ उनका झगड़ा, गार्ड्स के पूर्व कैप्टन आया और प्रशासनिक अधिकारी पेरोलो से अधिकार वापस लेना, बैकहिल गांव में मिशन और यहां तक कि ऑटन के मामले का भी उल्लेख किया गया था। इसलिए रॉकी से केवल 2 या 3 बार मिलने के बावजूद बर्ग रॉकी के बारे में उससे कहीं अधिक जानता था जितना रॉकी ने सोचा होगा। बेशक, हालांकि शेडो अलायंस की जांच गहन थी, लेकिन उसने माना रून को छुआ तक नहीं। रॉकी द्वारा माना रून की खोज एक सामान्य बात थी, एक अनजान पर्यवेक्षक को ऐसा लग रहा था कि उसने बस उस जमीन का दौरा किया था, एक ऐसी बात जिसे शेडो अलायंस भी अंदरूनी जानकारी के बिना अनदेखा कर देगा। फिर भी बर्ग जैसा बुद्धिमान व्यक्ति रॉकी के विकास पथ से कुछ सुराग निकालने में सक्षम था कि रॉकी का विकास आश्चर्यजनक रूप से तेज था। ये सचमुच तीव्र था। गार्ड्स के कैप्टन आया और प्रशासनिक अधिकारी पेरोलों को खत्म करने से लेकर थंडरहॉक सिटी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने तक केवल आधे साल में रॉकी ने शहर को मात्र 1,000 की आबादी से वर्तमान पैमाने तक विकसित किया। हालांकि थंडरहॉक सिटी अभी भी कमजोर थी, लेकिन हर पहलू ने आकार लेना शुरू कर दिया था, मानो एक मजबूत नींव रखी गई हो। व्यवस्थित विकास के साथ, ज्यादा कुछ कहे बिना, छोटे स्काई सिटीज के बीच एक अलग पहचान बनाना बस समय की बात थी। दूसरी ओर रॉकी की सैन्य शक्ति के विकास ने भी ध्यान आकर्षित किया। केवल 6 महीनों में उसने थंडरहॉक शहर को अपने बेड़े से सुसज्जित कर लिया और बैरन बोलिन के खिलाफ एक युद्ध में अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हुए अपनी शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। बिना किसी अतिशयोक्ति के बैरन बोलिन के साथ युद्ध में रॉकी द्वारा प्रदर्शित शक्ति छोटे स्काई सिटीज में औसत से ऊपर के स्तर पर पहुंच गई थी। यही कारण था कि अन्य सिटी लॉर्ड्स रॉकी से डरते थे, क्योंकि उसकी प्रदर्शित शक्ति वास्तव में सभी के लिए एक खतरा बन गई थी। दरअसल बैरन बोलिन के साथ हुए महायुद्ध ने रॉकी के नौसैनिक बेड़े की ताकत को उजागर कर दिया था। उसकी रक्षक सेना की ताकत अभी तक दुनिया को पता नहीं थी। लेकिन कृपया रॉकी के रक्षकों को कम मत आंकिए। एक ऐसी सेना जिसने सैकड़ों राक्षसों से युद्ध किया था और अंततः विजयी हुई थी, एक ऐसी ताकत जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता या करना भी नहीं चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए, जो ज्यादा जटिल नहीं था, डेटा के एक ऐसे सेट के जरिए जो उसे बस एक तमाशा लग सकता था, लेकिन एक चतुर व्यक्ति उसे कहीं ज्यादा समझ सकता था, और बर्ग इसी तरह का चतुर व्यक्ति था। इसलिए उसने रॉकी को तुरंत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे लुभाया जा सकता था और जिससे दोस्ती की जा सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने करीना को किया था। बर्ग संघर्ष में माहिर नहीं था, लेकिन उसके अपने लक्ष्य थे। वह लिंग्यू शहर को एक व्यापारिक शहर के रूप में विकसित करना चाहता था जो इटर्नल सिटी को टक्कर दे सके। इस महत्वाकांक्षा के लिए विभिन्न सक्षम लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली नहीं नगर स्वामियों से मित्रता करना उसके लिए एक महत्वपूर्ण मिशन बन गया। शक्तिशाली नगर स्वामियों को शक्तिशाली ग्राहकों के बराबर माना जाता था, एक ऐसी बात जिसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। इटर्नल सिटी सभी स्काई सिटीज का व्यापार केंद्र बन गया क्योंकि अनगिनत नगर स्वामियों ने वहां व्यापार करना चुना। इसके अलावा, जैसा कि कहावत है, एक नायक को मदद के 3 गिरोहों की जरूरत होती है। बर्ग, जो अपने शहर का विस्तार करना चाहता था, उसे विभिन्न बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी व्यापार उन्मुख शहर धन का प्रतीक होता है। पैसा ही दुनिया चलाता है और पैसा ही इंसान को सबसे बुरा भी बना सकता है। इटर्नल सिटी आसमान के उन राक्षसों में से एक है जिसे चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन लिंग्यू जैसे छोटे स्काई सिटी के लिए कई लोग इस पर अपनी नजरें गड़ाए रहेंगे, दूसरे छोटे स्काई सिटी के स्वामियों से लेकर बड़े स्काई सिटी के स्वामियों तक। ऐसी स्थिति में बर्ग को सहयोगियों, साथ ही सिटी लॉर्ड्स की आवश्यकता थी जो उसे उन बुरे इरादों वाले लोगों से बचाने में मदद कर सकें जो उसके शहर को लेने के लिए तैयार थे। रॉकी स्पष्ट रूप से उन सहयोगियों में से एक था जिनकी वह कल्पना कर रहा था। बर्ग के अनुसार रॉकी में क्षमता तो थी, लेकिन उसके पास समर्थन की कमी थी। उसके दुश्मन तो थे, लेकिन दोस्त कम थे जो उसकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करते थे। इसलिए अगर वह रॉकी से सच्चा दोस्त बन पाता तो यह उसके लिए ही फायदेमंद होता, कोई नुकसान नहीं। रॉकी निश्चित रूप से बर्ग के रवैये से अवगत था और समझता था कि बर्ग उससे दोस्ती करना चाहता है। वास्तव में वह इसके लिए बहुत आभारी था। रॉकी के लिए यह वाकई एक मुश्किल दौर था क्योंकि वह भी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था। हालांकि वह जीत गया, लेकिन उसे अपनी हार भी भारी पड़ी। थंडरहॉक शहर में आर्थिक संकट और मैरेंटे परिवार के प्रतिशोध के लिए लगातार तैयारी करने की जरूरत के साथ इन सब का रॉकी पर भारी असर पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में बर्ग की सहायता की पेशकश, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, रॉकी के लिए बर्फीले दिन में कोयला भेजने के समान थी और यह ऐसी बात थी जिसे वह हमेशा याद रखेगा। चतुर लोगों के बीच हर बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, समझ तो बस समझ होती है। इस प्रकार रॉकी ने थंडरहॉक शहर को अस्थायी रूप से लिंग्यू शहर के बगल में लंगर डाल दिया। दोनों शहर एक ही हवाई क्षेत्र में एक दूसरे के बगल में लटके हुए थे। ये स्थिति लगभग आधे महीने तक चलने की उम्मीद थी क्योंकि सभी युद्धपोतों की मरम्मत में कम से कम इतना समय लगना था। इस दौरान रॉकी ने सोचा था कि शायद उसे भविष्य की योजना बनाने के लिए कुछ दिन की फुर्सत मिले, लेकिन बदकिस्मती से उसे ऐसा मौका नहीं मिला। लगातार घट रही घटनाओं ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वह एक पल के लिए भी रुक नहीं पाया। रॉकी, जिसने शुरू में सोचा था कि वह कुछ समय आराम से बिता सकेगा, उसे आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सबसे पहले ऑटन नामक बूढ़ा आदमी था जो उसे लगातार परेशान करता रहता था। बैरन बोलिन पर जीत से थंडहॉक सिटी के सभी लोग खुश थे, फिर भी एक बूढ़ा आदमी था जो खुश नहीं था, और वह बूढ़ा आदमी ऑटन था। हालांकि रॉकी ने बैरन बोलिन को हरा दिया था, लेकिन उसने उसे उम्मीद के मुताबिक मारा नहीं था और न ही उसके अंग काटकर उसे अपाहिज बनाया था। इसलिए ऑटन को चौथी पीढ़ी का शून्य जादुई कवच नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, जिससे वह बेहद नाराज हो गया। इसलिए चूंकि रॉकी ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए थे, ऑटन रोज उससे मिलने आता था, उसे लगातार परेशान करता था, मानो रॉकी ने उस पर पैसे उधार लिए हों, और हर दिन प्रयोगों के लिए चौथी पीढ़ी के कवच की मांग करता था। अरे बदमाश, तुम इसे कब तक खींचते रहोगे? तुम मुझे चौथी पीढ़ी का कवच कब दोगे? गुरुजी, क्या हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, पैसे खत्म हो गए? तुम इतने बड़े शहर के मालिक हो, क्या तुम कुछ लाख सोने के सिक्के नहीं जुटा सकते? कुछ लाख स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर रॉकी हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि ऑटन सिर्फ चौथी पीढ़ी का कवच नहीं चाहता था, उसे चौथी पीढ़ी का विशेष कवच चाहिए था। इससे रॉकी इतना डर गया कि वह बिना कुछ कहे पलट गया और भाग गया। अगले दिन, अरे बदमाश, आज तू क्लास में क्यों नहीं आया? क्या तू मुझसे बच रहा है? गुरुजी, क्या मैंने आपको नहीं बताया? मैं इन दिनों युद्धपोत की मरम्मत की देखरेख में बहुत व्यस्त हूँ। अगर उन्हें कोई रून दिखाई दे गया तो परेशानी हो जाएगी। क्रोधित ऑटन को देखते हुए रॉकी ने बेबसी से जवाब दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि थंडहॉक सिटी के सभी युद्धपोतों में बदलाव किया गया था। हालांकि जादुई तोपों का पता लगाना आसान नहीं था और मरम्मत के दौरान उसे उन पर नजर रखनी थी, इसीलिए उसने लिलिया और मोटे को पहले ही उनकी व्यक्तिगत निगरानी के लिए भेज दिया था। हालांकि ऑटन से मिलने की उसकी अनिच्छा वास्तविक थी। ऑटन दूसरों को समझता ही नहीं था। थंडहॉक सिटी इन दिनों मुश्किल से चल रही थी। रॉकी के पास न तो फुर्सत थी और न ही प्रयोगों के लिए चौथी पीढ़ी का कवच बनाने की क्षमता। अगर उसकी इच्छा भी होती तो उसके पास पैसे नहीं थे। अतः संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद रॉकी पुनः भाग गया तथा ऑटन को हताशा में पैर पटकते हुए छोड़ दिया। हालांकि रॉकी अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी मुलाकात एलिन से हो गई, जो उसे सिटी लॉर्ड के भवन में ढूंढने आई थी। एलिन को देखकर रॉकी को भी सिरदर्द होने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह फिर से पैसों के बारे में बात कर रही थी, और वास्तव में वह सही था। महाराज, मैं रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिला हूँ। मैंने 2/4 में कपड़ा खरीदा है और फिर 1/4 अनाज उधार में लिया है। श्रेय, एलिन की बातें सुनकर रॉकी थोड़ा स्तब्ध रह गया और एलिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने राजकोष का सारा पैसा कपड़ा आयात करने में लगा दिया है। इस तरह हम कम से कम अगली 2 तिमाहियों के लिए शहर को कुछ राजस्व तो दे ही सकते हैं। जहां तक अनाज की बात है, वह उधार पर है। हम अगली तिमाही में मिलकर उसका हिसाब कर लेंगे। इस तरीके से हम कम 2 महीने और गुजारा कर सकते हैं। थंडहॉक सिटी की आर्थिक स्थिति पहले से ही संकट में थी और रॉकी ने युद्धपोत की मरम्मत के लिए 35,000 सोने के सिक्के ले लिए थे, इसलिए एलिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही थी और मुश्किल समय से बचने के लिए उसे इस क्रेडिट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। क्रेडिट के इस तरीके पर निर्भर करते हुए वह थंडहॉक सिटी को कुछ और समय तक बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। एलिन को रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्रेय मिलने की क्षमता वास्तव में रॉकी की वर्तमान प्रतिष्ठा की बदौलत ही मिली थी। रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और थंडहॉक सिटी के बीच व्यापक सहयोगात्मक संबंधों को देखते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से बैरन बोलिन के साथ रॉकी की लड़ाई के परिणाम के बारे में तुरंत पता चल गया, साथ ही उस घटना के बारे में भी जब उसने माटू के हाथों से 1,000 सेटलर्स छीन लिए थे। इससे रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तुरंत रॉकी और थंडहॉक सिटी पर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि थंडहॉक सिटी की आबादी बढ़ गई थी, दोनों पक्षों के बीच व्यापार बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब एलिन ने क्रेडिट के लिए अनुरोध प्रस्तावित किया तो दूसरा पक्ष एक बार में सहमत हो गया। हालांकि ये सब बताने के बाद एलिन ने असहाय होकर रॉकी की ओर देखा। हे प्रभु, इस बार खजाने में सचमुच पैसा खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ। एलिन को गहरी सांस लेते देख रॉकी ने उसका कंधा थपथपाया, और कुछ न बता पाने पर वह मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। अपने कमरे में वापस आकर वह बिस्तर पर बैठ गया, कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर उसने भाड़े के सैनिकों के समूह का टास्क रिसीवर निकाल लिया। अब जबकि थंडहॉक शहर का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था, रॉकी को जल्दी से पैसे जुटाने थे। सबसे आसान और तेज तरीका था भाड़े के सैनिकों के संग से मिले कामों पर निर्भर रहकर पैसे कमाना। जैसे ही युद्धपोतों की पूरी तरह से मरम्मत हो जाती, रॉकी के पास फिर से एक मजबूत बेड़ा होता। हालांकि किसी बड़े युद्ध के बाद ये पहले जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन 2 बड़े युद्धपोतों के साथ इसकी युद्ध शक्ति अभी भी बहुत जबरदस्त थी। रॉकी भाड़े के सैनिकों के संघ के कार्यों को पूरा करने के लिए इस बेड़े पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था, जिसमें पर्याप्त युद्ध शक्ति बनी रहती थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार वह ज्यादा से ज्यादा एस्कॉर्ट प्रकार के काम ही चुनेगा, जैसे व्यापारियों के कारवां या माल की सुरक्षा। इस प्रकार के काम का पहला फायदा यह था कि कमीशन काफी ज्यादा था। एस्कॉर्ट कार्यों में आमतौर पर 35,000 से 50,000 स्वर्ण मुद्राओं तक का कमीशन होता था, जो सभी प्रकार के कामों में सबसे ज्यादा था। बेशक ऐसे उच्च कमीशन कार्यों में उच्च आवश्यकताएं भी निहित थीं, लेकिन रॉकी के पास जो बेड़ा था उसके साथ, जब तक वह ऐसे कार्यों को स्वीकार नहीं करता था जो बहुत अतिरंजित थे, सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थीं। दूसरी बात, एस्कॉर्ट कार्य की अवधि कम होती थी। एक एस्कॉर्ट कार्य को पूरा करने में अक्सर केवल 10 दिन या आधा महीना लगता था, जो थंडरहॉक सिटी के चल रहे सोने के सिक्कों के कारोबार के लिए स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। इस स्थिति में रॉकी बिस्तर पर लेट गया और टास्क रिसीवर का उपयोग करके एक एक करके कार्यों का चयन करने लगा। चूंकि उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए वह अधिक संख्या में कार्यों में से चुनाव कर सकता था, जिसमें अधिक समय भी लगता था। हालांकि रॉकी बहुत चिंतित था, फिर भी उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने बेतरतीब ढंग से काम नहीं चुने। दरअसल उसके पास धीरे धीरे काम चुनने का समय था, जब तक कि युद्धपोत पूरी तरह से मरम्मत के बाद उसे पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त काम नहीं मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वह सही काम ढूंढ पाता, कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से उसे ढूंढने आ गया। उस दिन ऑटन द्वारा परेशान किए जाने से बचने के लिए रॉकी गार्ड कैंप में छिप गया और गार्डों के साथ प्रशिक्षण लेने लगा। तभी अचानक उसके पास एक जरूरी रिपोर्ट आई। क्या स्काई सिटी से कोई आया है? स्काईपोर्ट गार्ड की रिपोर्ट सुनकर रॉकी ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके दिमाग में पहला विचार यह आया कि मैरेंटे परिवार ने उसके खिलाफ बदला लेने के लिए किसी को भेजा था। इससे रॉकी तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि थंडरहॉक सिटी अभी एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, बर्ग द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति भी उसी समय वहां पहुंच गया। इस समय थंडरहॉक सिटी और लिंग्यू सिटी बहुत करीब थे, इसलिए भले ही रॉकी थंडरहॉक सिटी में था, बर्ग के लिए उससे संपर्क करना बहुत आसान था। लॉर्ड रॉकी, बर्ग सिटी के लॉर्ड बर्ग आपको लॉर्ड करीना के स्वागत के लिए भोज के लिए सिटी लॉर्ड्स मैंशन में आमंत्रित करते हैं। करीना, वह आ गई। ये सुनकर रॉकी पहले तो चौंका, फिर उसका बेचैन दिल हल्का हुआ और उसने पूछा, बाहर जो स्काई सिटी है, क्या वह करीना का रोज सिटी है ना? हाँ, ये वास्तव में लॉर्ड करीना का रोज सिटी है। अच्छा, ये जानते हुए कि बाहर का स्काई सिटी ही रोज सिटी है, रॉकी को राहत मिली और वह सिटी लॉर्ड के भवन में वापस जाए बिना ही सीधे बर्ग के लोगों के साथ लिंग्यू सिटी चला गया। कुछ बातें यूं ही संयोग से हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार लिंग्यू शहर पहुंचा था, रॉकी और बर्ग ने करीना का जिक्र किया था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि करीना से दोबारा मिलना पक्का नहीं है, इसलिए हमने ज्यादा बातचीत नहीं की। और अचानक कुछ ही दिन बीते थे कि वे फिर से मिले। हालांकि रॉकी अभी भी करीना को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन बर्ग द्वारा बताई गई बातों से वह ये बता सकता था कि करीना एक छोटे से स्काई सिटी की सिटी लॉर्ड होने के बावजूद औसत सिटी लॉर्ड की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थी, निस्संदेह एक दुर्जेय व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति के लिए, ये देखते हुए कि उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था, रॉकी स्वाभाविक रूप से परिचित होना चाहता था, इसलिए जब उसे बर्ग का निमंत्रण मिला तो वह सिटी लॉर्ड्स मैंशन में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे लिंग्यू सिटी चला गया। बेशक सिटी लॉर्ड्स मैंशन में वापस न आने का एक बड़ा कारण ये था कि वह ऑटन को नहीं देखना चाहता था, उस बुरे व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में रॉकी को बर्ग के सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसे सीधे बैंक्वेट हॉल में ले जाया गया, जहां बर्ग और करीना पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। करीना के लिए बर्ग का स्वागत समारोह काफी भव्य था, यहां तक कि रॉकी के लिए आयोजित स्वागत समारोह से भी अधिक भव्य। लेकिन चूंकि अभी भी दिन का उजाला था, इसलिए बर्ग ने कोई डांस पार्टी नहीं रखी थी, बल्कि उन्होंने एक लंच का आयोजन किया था। हाहा, रॉकी, तुम अंततः आ ही गए। रॉकी के अपनी सीट पर बैठने के बाद मेजबान के रूप में बर्ग ने सक्रियता से अपना गिलास उठाया और रॉकी और करीना से कहा, तुम दोनों, हम इटर्नल सिटी में मिले थे और आज हम फिर से मेरी जगह यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही नियति स्वर्ग द्वारा निर्धारित है? इस भाग्यशाली मुलाकात के लिए हमें एक टोस्ट पीना चाहिए। एक नगरपाल और चतुर व्यवसायी होने के नाते बर्ग का आचरण बेदाग था और वे माहौल बनाने में बेहद कुशल थे। हालांकि वहां केवल 3 लोग बैठे थे और एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे, फिर भी उनके नेतृत्व में तीनों ने जल्दी ही गर्मजोशी से बातचीत शुरू कर दी और किसी भी तरह की असहज चुप्पी से बच गए। करीना, तुमने सुना है ना, रॉकी ने हाल ही में एक बड़ी लड़ाई जीती है। तुम क्या सोचती हो, क्या तुम ललचा रही हो? छोटे स्काई सिटीज के सकल में रॉकी और बैरन बोलिन के बीच लड़ाई सबसे गर्म विषय था और रॉकी के उपस्थित होने के कारण बातचीत स्वाभाविक रूप से इस विषय पर आ गई। हालांकि रॉकी को यह उम्मीद नहीं थी कि बर्ग ने शुरू से ही मैचमेकर की भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे करीना के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था और उसका चेहरा, जो ऐसी स्थिति का आदी नहीं था, लाल हो गया। दूसरी ओर करीना को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। लाल गाउन पहने उसने रॉकी को गर्व से देखा और फिर हंस पड़ी। अभी तक पूरी तरह से नहीं, ये काफी नहीं है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। करीना, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी। बर्ग, आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, मेरी गलती है, अब और नहीं कहूंगा। बर्ग की ओर तेजी से देखने के बाद करीना ने तेजी से शर्माते हुए रॉकी की ओर देखा और अचानक पूछा, क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? इस टिप्पणी पर बर्ग, जो अभी अभी चुप हुआ था, जोर से हंस पड़ा और रॉकी ने महसूस किया कि उसके गाल और भी गर्म हो गए हैं, क्योंकि कोई भी बता सकता था कि करीना उसे चिढ़ा रही थी। यह महिला वास्तव में ऐसी नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। लेकिन रॉकी को चिढ़ाने के बाद करीना ने गंभीरता से कहा, रॉकी, तुम में हिम्मत है? तुमने मैरेंटे परिवार जैसे विशालकाय को भड़काने की हिम्मत की? क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? मैंने नहीं किया है। रॉकी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मैरेंटे परिवार को यह एहसास हो जाए कि मुझे धमकाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत सरल है। प्रभावशाली इस उत्तर से बर्ग को बहुत खुशी हुई और करीना भी हंस पड़ी और उनकी ओर अपनी नजरें झुका ली, फिर पूछा, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैरेंटे परिवार बदला लेने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए चुप रहने की योजना बना रहा हूँ। रॉकी झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सचमुच कुछ समय के लिए चुपचाप रहने की योजना बनाई थी, एक तो मैरेंटे परिवार के बदले से बचने के लिए और दूसरा खुद को राहत देने के लिए। फिलहाल वह थंडरहॉक शहर में वित्तीय संकट के टलने और सब कुछ सामान्य होने तक इंतजार करेगा, उसके बाद ही अपने अगले कदम पर विचार करेगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, करीना ने अपना सिर हिलाया और बर्ग ने भी बार बार अपना सिर हिलाया। क्या गलत? उन दोनों को इस तरह देखकर रॉकी थोड़ा हैरान हुआ। क्या उसने कुछ गलत कह दिया? और जल्द ही करीना ने उसे जवाब दिया, आपको वास्तव में प्रतिशोध के बारे में चिंतित होना चाहिए, लेकिन आपको मैरेंटे परिवार के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि वे जितने बड़े होते हैं उतनी ही धीमी गति से चलते हैं और मैरेंटे परिवार भी ऐसा ही है। इसके अलावा परिवार के भीतर काफी अंदरूनी कलह है। परिवार को थोड़ी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि बैरन बोलिन लेक्सिंगटन गुट से हैं। यदि लेक्सिंगटन ने स्वयं आपके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की तो फिर चाहे आप पृथ्वी के छोर तक भाग जाएं, वह बेकार होगा, वे आसानी से आपका सफाया कर सकते हैं। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि लेक्सिंगटन की शक्ति बहुत प्रबल है। परिवार में ही उसके विरोधी हैं जो उसे लापरवाही से कदम उठाने नहीं देंगे। रॉकी की उम्र के आसपास होने के बावजूद करीना उससे कहीं ज्यादा समय से सिटी लौट रही थी। सोच समझ या बुद्धि के मामले में वह रॉकी से कहीं बेहतर थी, इसीलिए वह मैरेंटे परिवार के साथ स्थिति का इतनी जल्दी विश्लेषण कर लेती थी जिससे रॉकी की भौहें तन जाती थी। रॉकी को करीना की बात से सहमत होना ही पड़ा। लेक्सिंगटन के बारे में रॉकी को भले ही ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन उसे याद आया कि सिरिल ने कहा था कि वह और उसके पिता बैरन बोलिन को थंडरहॉक सिटी पर कब्जा करते नहीं देखना चाहते थे, जिससे पता चलता था कि सिरिल का गुठी परिवार में लेक्सिंगटन का विरोधी था। और अगर ऐसा होता, अगर लेक्सिंगटन बैरन बोलिन का बदला लेना चाहता तो सिरिल का गुट कतई राजी नहीं होता। क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सुरक्षित था? ये बात ध्यान में रखते हुए रॉकी ने सीधे करीना और बर्ग से पूछा, आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार क्या मुझे अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? रॉकी, मजाक मत करो, अभी तुम्हारे पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए बर्ग ने ये कहा और करीना की ओर देखा, जिसने फिर बातचीत को आगे बढ़ाया, बर्ग सही कह रहे हैं, आपके पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? जाहिर है आपको लेक्सिंगटन के प्रतिशोध की चिंता करनी होगी। भले ही लेक्सिंगटन इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बावजूद अपने परिवार द्वारा आपके साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करने से विवश हो, अपने संबंधों और प्रभाव के कारण ऐसे कई लोग होंगे जो आपको खत्म करने में उसकी मदद करने को तैयार होंगे। लेक्सिंगटन का प्रभाव, क्या ये सचमुच इतना महान है? करीना की ओर देखते हुए रॉकी उसकी बात समझ गया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। तुम महान परिवारों को कम आंक रहे हो। करीना ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए रॉकी को एक सीख दी। लेक्सिंगटन जैसा व्यक्ति, जो खुद एक बड़े स्काई सिटी का सिटी लॉर्ड है और 1,00,000 लोगों को नियंत्रित करता है, अपने परिवार के भीतर एक गुट का नेता भी है। तुम्हें क्या लगता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है या नहीं? मेरा विश्वास करो, यदि लेक्सिंगटन चाहे तो न केवल मध्यम और छोटे स्काई सिटीज के स्वामी बल्कि बड़े स्काई सिटीज के स्वामी भी उसकी इच्छा पूरी कर देंगे और तुम्हें आसानी से खत्म कर देंगे। ... जैसे ही करीना ने अपनी व्याख्या समाप्त की, रॉकी की भौहें अनजाने में कस गईं। इससे पहले, हालांकि उसने सोचा था कि मैरेंटे परिवार उससे बदला लेगा, उसने इस बारे में सिर्फ सतही तौर पर सोचा था और ज्यादा गहराई से नहीं सोचा था। करीना की बातों से उसे तुरंत समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया। यानी अगर लेक्सिंगटन किसी और को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उसे क्या करना चाहिए? ये सवाल बेहद अहम था। अगर लेक्सिंगटन ने सचमुच ऐसा किया होता तो ये रॉकी को एक बेहद मुश्किल स्थिति में धकेलने जैसा होता, जहां उसे ये भी पता नहीं होता कि किससे सावधान रहना है, क्योंकि लेक्सिंगटन का पक्ष लेने के लिए कोई भी उसका दुश्मन बन सकता था। आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करूं? ये सोचकर रॉकी खुद को बर्ग और करीना की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। ये समय अलग थलग रहने का नहीं था। ऐसे नाजुक पल में उसे जहां जरूरत थी वहां सलाह लेनी ही पड़ी, यही समझदारी थी। हालांकि उनके प्रश्न के दो बिल्कुल भिन्न उत्तर सामने आए। बेशक तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, उसकी ओर देखते हुए करीना गर्व से बोली, अगर कोई तुम पर हमला करने की हिम्मत करे तो उसे मिटा दो। एक बार जब तुम दो तीन स्काई सिटीज का सफाया कर दोगे तो वे तुच्छ लोग तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हे रॉकी, उसकी बात मत सुनो। करीना की बात पूरी ही हुई थी कि बर्ग ने रॉकी की तरफ हंसते हुए कहा, रॉकी अगर तुम मेरी सलाह मानते हो तो तुरंत कोई गठबंधन ढूंढ लो और उसमें शामिल हो जाओ। कहावत है, बड़े पेड़ के नीचे शरण लेना अच्छा होता है। जब रॉकी ने बर्ग और करीना से उनकी राय पूछी तो दोनों ने बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए जो उनके संबंधित चरित्र के अनुरूप थे। करीना की सलाह बहुत आसान थी। उन्होंने रॉकी से कहा कि आगे बढ़ो, पूरी ताकत लगाओ, अगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करे तो उसे भी पलटवार करने की हिम्मत करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर दो बार यानी विरोधी के शहर को तबाह कर देना चाहिए। एक दो बार ऐसा करने के बाद कोई भी उसे फिर से हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह सुझाव, खैर यह न केवल करीना की विशेषता थी बल्कि कुछ हद तक समझ में भी आता था। रॉकी के खिलाफ लेक्सिंगटन का साथ देने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, शायद लेक्सिंगटन का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर रॉकी ने उन्हें जो नुकसान पहुंचाया वह लेक्सिंगटन से मिलने वाले किसी भी लाभ से कहीं ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से ये लोग कोई कार्रवाई करने से बचते। सच कहूं तो रॉकी सचमुच यही करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व भले ही करीना से अलग हो, लेकिन इस मामले में उनका नजरिया बिल्कुल एक जैसा था। अगर कोई उसे तंग करता तो वह जरूर जोरदार पलटवार करता, लेकिन इस तरीके में एक व्यवहारिक समस्या थी, रॉकी में ताकत नहीं थी। अगर उसके पास स्काई सिटी को तबाह करने की ताकत नहीं थी तो वह तुच्छ लोगों को कैसे डरा सकता था। ये सुनने में जितना दिलचस्प लग रहा था रॉकी इसे पूरा नहीं कर सका। करीना की तुलना में बर्ग की सलाह ज्यादा सहज थी। उसने रॉकी को किसी गठबंधन में शामिल होने का सुझाव दिया। इस सलाह ने रॉकी की रुचि जगा दी, क्योंकि बर्ग की बात सही थी, बड़े पेड़ की छाया में आराम मिलता है। लेक्सिंगटन न केवल अपनी अपार शक्ति के कारण बल्कि शक्तिशाली परिवारों के समर्थन के कारण भी इतने प्रभावशाली थे। दरअसल कई लोग उनका समर्थन करते थे उनकी खातिर नहीं बल्कि मैरेंटे परिवार के सम्मान के कारण। तो क्या हुआ अगर रॉकी भी किसी दल में शामिल हो गया? क्या उसका भी कोई समर्थक नहीं होगा? बर्ग, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं काफ का साम्राज्य, आकाश गठबंधन या जादुई ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में शामिल हो जाऊं? रॉकी ने पूछा। आकाश की तीन प्रमुख शक्तियों के बारे में अपनी सीमित जानकारी के बावजूद भी उसे पता था। बर्ग ने उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं है कि यह इन तीन प्रमुख शक्तियों में से एक हो। जैसे जैसे वे इस विषय पर आगे बढ़ते गए बर्ग और अधिक बतूनी होते गए। बोलते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया। हालांकि वर्तमान में आकाश पर इन तीन शक्तियों का प्रभुत्व है, लेकिन उनमें शामिल होना आसान नहीं है, उनके मानक बहुत ऊंचे हैं। लेकिन उम्मीद मत खोइए, आकाश में और भी कई ताकतें हैं, बड़ी और छोटी दोनों। हो सकता है कि वे तीनों बड़ी ताकतों के बराबर न हो, लेकिन कुछ किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। मुझे सोचने दो, उदाहरण के लिए विंडरनर एलायंस, रेशियल एलायंस या ब्लैकवाटर वॉर एलायंस। ये ताकतें मैरेंटे परिवार जितनी ही ताकतवर हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में शामिल हो जाएं, तो लेक्सिंगटन को भी आपको खत्म करने की कोशिश करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा। आखिरकार आसमान सिर्फ मैरेंटे परिवार के इर्द गिर्द ही तो नहीं घूमता। इसके अलावा अगर आप इन ताकतों में शामिल हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ सुरक्षा मिलेगी बल्कि स्काई सिटी का विकास भी तेज होगा। एक गठबंधन जो संसाधन साझा कर सकता है वह निश्चित रूप से एक अकेले स्काई सिटी की क्षमता से कहीं ज्यादा है। ऐसा होने पर बर्ग के शब्दों से प्रभावित होकर रॉकी को लगा कि ऐसा कदम वाकई एक अच्छी रणनीति हो सकती है। किसी सेना में शामिल होने से न सिर्फ वह लेक्सिंगटन के प्रतिशोध से बच जाएगा बल्कि थंडरहॉक सिटी के भविष्य के विकास में भी मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने पूछा, मैं इन ताकतों से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? इस तरह की बात के लिए आपको करीना से पूछना होगा, उन्हें गठबंधनों से कई निमंत्रण मिले हैं, बर्ग ने जवाब दिया। इस मामले पर बर्ग ने करीना की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वह बेहतर जानती थी क्योंकि पहले भी अन्य बलों ने उससे संपर्क किया था। लेकिन जब रॉकी करीना की ओर मुड़ा तो उसने बस अपने होंठ भींच लिए और उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा, मुझसे मत पूछो, वे मेरे पास आए थे और मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे संपर्क करूं। इसके अलावा मैंने अभी तक किसी भी दल में शामिल नहीं हुआ हूं। यह करीना की प्रतिक्रिया और उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह गठबंधन में शामिल होने के विचार को पूरी तरह से नकारती थी। दरअसल उसने रॉकी की तरफ तिरछी नजर से देखा। किसी ताकतवर व्यक्ति से चिपके रहने के बारे में सोचने के बजाय बेहतर होगा कि तुम खुद को और मजबूत बनाने के बारे में सोचो। एक आदमी को यही करना चाहिए। न जाने क्यों करीना का मूड अचानक से खराब हो गया था। रॉकी के साथ उसका व्यवहार एकदम से बिगड़ गया था। यहां तक कि रॉकी के प्रति उसके हाव भाव भी कुछ ठंडे और गुस्से वाले हो गए थे। क्या हो रहा था? रॉकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके अचानक परिवर्तन का कारण क्या था। वह थोड़ा उलझन में था। उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा था। हालांकि जब उन्होंने कुछ उलझन में बर्ग की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि बर्ग उनकी ओर अपना सिर थोड़ा हिला रहे थे और फिर उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। ठीक है रॉकी वाला मामला एक दो दिन में सुलझने वाला नहीं है। चूंकि वह अभी व्यस्त नहीं है तो चलिए इस मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कहने के बाद बर्ग ने करीना की ओर देखा। करीना, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम रॉकी को किसी चीज के लिए ढूंढ रही थी? करीना अभी भी गुस्से में थी। उसने ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। उसे इस तरह देखकर बर्ग को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने रॉकी से कहा, रॉकी, करीना विशेष रूप से तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आए है। ओह, ये सुनकर रॉकी ने आश्चर्य से करीना की ओर देखा क्योंकि वह इस मामले से पूरी तरह अनजान था। ये सही है, मैं सचमुच तुम्हें ढूंढने आया हूँ। रॉकी द्वारा काफी देर तक देखे जाने के बाद करीना ने अंततः अपना संयम वापस पाया और बोली, क्या निकट भविष्य के लिए आपकी कोई योजना है? मैं कुछ खास नहीं, बस युद्धपोत ठीक हो जाने के बाद कुछ समय के लिए चुपचाप रहना है और कुछ अतिरिक्त पैसे के लिए कुछ भाड़े के सैनिकों के गिल्ड मिशन भी करने हैं। बर्ग और करीना के साथ पहले ही इतनी विस्तृत बातचीत हो जाने के बाद रॉकी ने उनसे कुछ भी झूठ नहीं बोला या कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि अपने अगले कदमों के बारे में खुलकर बताया। चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं तो मेरे साथ आइए। हालांकि रॉकी की योजनाओं के बारे में जानने के बाद करीना ने अनायास ही सुझाव दिया, तुम्हारे साथ चलूं? क्या करने, किसी को ढूंढना और लड़ाई लड़ना? जब करीना ने ये कहा, रॉकी शराब पी रहा था और उसने अपना ड्रिंक थूक दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि करीना उसे इसी वजह से ढूंढ रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी नजर में वह किसी प्रकार का युद्ध व्यापारी बन गया हो? क्या तुम डर गए हो? करीना के लगातार सवालों का सामना करते हुए रॉकी खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इस औरत का व्यक्तित्व वाकई अनोखा था, इसलिए उसने अपना मुंह पोंछा और पूछा, तुम किससे लड़ने की योजना बना रही हो? वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप। अब बर्ग की बारी थी अपना ड्रिंक थूकने की। मुंह पोंछने से पहले ही उसने चौंककर करीना की तरफ देखा, करीना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने वाइल्ड हॉर्स पायरेट ग्रुप को भड़काने की हिम्मत की है? एयर पायरेट ग्रुप। एयर पायरेट ग्रुप शब्द मूल रूप से पायरेट ग्रुप से निकला है। दानवों द्वारा भूमि पर कब्जा करने के बाद पायरेट ग्रुप शब्द लुप्त हो गया, क्योंकि महाद्वीप के नष्ट हो जाने के बाद महासागर नहीं रहा और स्वाभाविक रूप से समुद्री डाकू भी नहीं रहे। हालांकि जैसे ही समुद्री डाकू समूह गायब हो गए, हवाई समुद्री डाकू समूह उभरे, जिन्होंने सीधे तौर पर समुद्री डाकुओं की जगह आसमान के लुटेरे के रूप में ले ली। आकाश युग के दौरान शहरों के बीच सभी तरह के संपर्क, खासकर वाणिज्य मंडलों के लिए, आकाश जहाजों पर निर्भर थे। ये मंडल विभिन्न आकाश नगरों तक माल केवल आकाश जहाजों के जरिए ही पहुंचा सकते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से हवाई समुद्री डाकू समूहों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त आकाश समुद्र से भी अधिक विशाल और असीम है, जिससे आज के हवाई समुद्री डाकू समूह पुराने समुद्री डाकू समूहों की तुलना में और भी अधिक उग्र और भयानक हो गए हैं। अन्यथा भाड़े के सैनिकों के समूह के पास इतने सारे अनुरक्षण उन्मुख मिशन नहीं होते, जिनका उद्देश्य इन हवाई समुद्री डाकू समूहों से रक्षा करना है। करीना रॉकी को ढूंढने इसलिए आई थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह हवाई समुद्री डाकू समूह को खत्म करने में उसका साथ देगा। रॉकी उसके प्रस्ताव से आश्चर्यचकित था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि यह करीना के चरित्र के साथ बहुत सुसंगत था। हालांकि रॉकी को सबसे ज्यादा हैरानी बर्ग की प्रतिक्रिया से हुई। बर्ग और करीना एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बर्ग को उसके इस विचार पर जरा भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए था। क्या ये करीना के लक्ष्य से संबंधित हो सकता है? करीना ने साफ कर दिया था कि वह वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का सफाया करना चाहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस एयर पायरेट ग्रुप से निपटना खास तौर पर मुश्किल हो? इस विचार के साथ रॉकी ने बर्ग की ओर देखा, जिसने फिर उसे एक स्पष्टीकरण दिया। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने एक बार करीना का सामान लूट लिया था। सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि एक युद्धपोत भी। इस मामले पर करीना बेहद उत्तेजित हो गई और मेज पर जोर से पटकते हुए बर्ग को सही किया, मैंने अभी अभी एक एस्कॉर्ट शिप और सामान की एक खेप मंगवाई थी और रोज सिटी लौटते समय वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने उन्हें लूट लिया। सामान और बिल्कुल नया युद्धपोत सब उन कमीनों ने नष्ट कर दिया। उनकी कीमत मुझे लाखों स्वर्ण मुद्राओं में चुकानी पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि करीना इतनी परेशान थी। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप से हुआ नुकसान वाकई बहुत बड़ा था, लाखों सोने के सिक्कों का नुकसान किसी भी छोटे स्काई सिटी लॉर्ड के लिए बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि करीना द्वारा अपनी भड़ास निकालने के बाद बर्ग ने आह भरी और कहा, करीना, वह 2 साल पहले की बात है, उससे इतना चिपके क्यों रहना? भले ही 10 साल और बीत जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। करीना ने बर्ग को एक भयंकर नजर से देखा, जिससे उसका अदम्य संकल्प प्रदर्शित हुआ। रॉकी को उसकी तीखी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई, लेकिन बर्ग को कुछ बातें पता थी, इसलिए उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। इसके बजाय उसने रॉकी से कहा, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप कुछ हद तक कुख्यात है। दर्जनों युद्धपोतों के मालिक होने के नाते उन्होंने आसमान में काफी लूटपाट की है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब आकाश में कई हवाई समुद्री डाकू समूह हैं और विशुद्ध शक्ति के संदर्भ में वाइल्ड हॉर्स का स्थान बहुत ऊंचा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एयर पायरेट ग्रुप को स्काई सिटी का समर्थन प्राप्त है। बोलते हुए बर्ग ने करीना की तरफ देखा और फिर रॉकी को समझाते हुए कहा, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का वाइल्ड हॉर्स सिटी से गहरा नाता है, या यूं कहें कि इस एयर पायरेट ग्रुप को असल में वाइल्ड हॉर्स सिटी ही खड़ा करती है। ये खास तौर पर स्काई सिटी के लिए गंदा काम करने और अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए है। जंगली घोड़ा शहर, एक मध्यम आकार का स्काई सिटी। बर्ग ने रॉकी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, वाइल्ड हॉर्स सिटी एक मध्यम आकार का स्काई सिटी है जिसकी आबादी 30,000 है। सिटी लॉर्ड कार्लो एक निर्दयी और कठोर व्यक्ति है जिससे निपटना काफी मुश्किल है। जब तक बर्ग ने यह समझाया तब तक रॉकी मूलतः स्थिति को समझ चुका था। 2 साल पहले वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने करीना के युद्धपोत और माल को लूट लिया था, जिससे उसे कई लाख स्वर्ण मुद्राओं का भारी नुकसान हुआ था। करीना को ये रंजिश हमेशा याद रही। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप सिर्फ एक डाकू गिरोह था, लेकिन उनके पीछे एक मध्यम आकार के स्काई सिटी का समर्थन था। यही वजह थी कि करीना की हरकतों पर बर्ग ने गहरी सांस ली। दरअसल करीना का कदम काफी जोखिम भरा था। वह वाकई ताकतवर थी, जो बर्ग के उसके प्रति रवैये और उसके आत्मविश्वास और गर्व से साफ जाहिर था। बिना किसी असली ताकत के कोई करीना का आत्मविश्वास हासिल नहीं कर सकता था। हालांकि चाहे वह कितनी भी आत्मविश्वासी क्यों न हो, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह थी तो बस एक छोटे से आकाश नगर की नगर स्वामी। इस हैसियत ने अनिवार्य रूप से एक सीमा तय कर दी थी, जिसका अर्थ था कि करीना केवल छोटे स्काई सिटीज में ही प्रभुत्व स्थापित कर सकती थी। वह अंततः एक छोटे शहर की सिटी लॉर्ड थी, लेकिन वह एक मध्यम आकार के स्काई सिटी को भड़काने की तैयारी कर रही थी। इस तरह की हरकत अकल्पनीय थी। एक छोटे से स्काई सिटी को स्वाभाविक रूप से एक मध्यम आकार के स्काई सिटी से दूर रहना चाहिए, जानबूझकर उकसाने की तो बात ही छोड़िए। क्या ये पागलपन नहीं था? इस तरह रॉकी भी भौचक्का रह गया। उसके सामने पहले से ही काफी मुसीबतें थीं, क्योंकि मैरेंटे परिवार उसे छिपने पर मजबूर कर रहा था। अगर अब वह एक मजबूत दुश्मन को उकसाने की कोशिश करता तो यह वाकई कोई समझदारी भरा फैसला नहीं होता। और करीना ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने कहा, रॉकी, चूंकि हम तीनों यहाँ बैठे हैं तो बात को घुमा फिराकर नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है। एक नगर स्वामी होने के नाते, जो युद्ध में बेहद कुशल था, करीना को अच्छी तरह पता था कि एक बड़े युद्ध के बाद रॉकी को क्या चाहिए, क्योंकि वह खुद भी ऐसी ही स्थिति से गुजर चुकी थी। इसलिए उसने आगे कहा, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप काफी मजबूत है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी लूटपाट की है, इसलिए यदि हम उन्हें एक ही झटके में मार गिरा सकें तो इससे आपको निश्चित रूप से किसी भी मिशन से अधिक लाभ होगा। हालांकि करीना इस मामले में थोड़ी आवेगी और जिद्दी लग रही थी, लेकिन असल में वो बहुत समझदार थी। बस कुछ ही शब्दों में उसने रॉकी को अपनी ओर खींच लिया और रॉकी से ये सवाल पूछने को मजबूर हो गया, कितना बनाया जा सकता है? लोग, पैसा, सामान, इन सब को जोड़ो तो ये कम से कम 10 लाख से अधिक होगा। 1 मिलियन। ये नंबर सुनते ही रॉकी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से करीना की ओर देखा, फिर बर्ग की ओर मुड़ गया। यदि आप दोनों एक ही बार में वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो वास्तव में आप इतना कमा सकते हैं। रॉकी की ओर सिर हिलाते हुए बर्ग ने बताया, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप कई सालों से बेलगाम है और हालांकि उनकी चोरी का ज्यादातर माल वाइल्ड हॉर्स सिटी को सौंप दिया गया है, इतने सालों बाद भी उन्होंने कुछ अतिरिक्त माल अपने लिए बचा रखा होगा। उनके पास निश्चित रूप से 100 या उससे ज्यादा मिलियन की दौलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह मत भूलिए कि आप किसके साथ परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि बर्ग को पूरा विश्वास था कि करीना झूठ नहीं बोल रही है और यह साबित कर रही थी कि अगर यह ऑपरेशन सफल रहा तो रॉकी और करीना को वाकई बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, फिर भी उसने बाद में जोर देकर कहा, तुम दोनों, एक पुराने तीर के घाव का बदला लेने के लिए और दूसरा कुछ पैसे कमाने के लिए एक मध्यम आकार के स्काई सिटी को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक है? सच कहें तो बर्ग काफी ईमानदार थे और गंभीरता से करीना और रॉकी को सलाह दे रहे थे कि वे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, क्योंकि जिन लोगों को वे भड़काने वाले थे उनसे निपटना वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि उसकी गंभीर सलाह के बावजूद करीना ने उसे अनसुना कर दिया। उसने रॉकी की तरफ अपनी आंखों से देखा। रॉकी, क्या तुम इस डकैती में मेरे साथ शामिल होने की हिम्मत रखते हो या नहीं? करीना के प्रस्ताव ने रॉकी को सचमुच मुश्किल में डाल दिया था। निष्पक्ष रूप से कहें तो वह करीना के साथ इस काम में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था। लाखों कमाने की संभावना एक बहुत बड़ा आकर्षण थी, खासकर ऐसे समय में जब रॉकी को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दूसरी ओर वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के पीछे मौजूद शक्तिशाली समर्थन ने उसे आशंकित कर दिया था। उसका एक बड़ा दुश्मन पहले से ही था, अगर वह वाइल्ड हॉर्स सिटी, जो एक मध्यम आकार का स्काई सिटी था, पर हमला करने में कामयाब हो जाता तो जिंदगी बेशक और भी मुश्किल हो जाती। क्या चुनना है, ये वास्तव में एक कठिन प्रश्न था। करीना के इस जरूरी सवाल का जवाब देते हुए रॉकी ने शांत रहना चुना और तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने काफी देर तक सोचा और फिर आंखें उठाकर बोला, करीना, तुम मेरे साथ सहयोग क्यों करना चाहती हो? सीधा जवाब देने के बजाय रॉकी ने ये सवाल पूछा, जिससे उसके दिल में उठे संदेह की भी प्रतिध्वनि हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करीना उसके साथ सहयोग क्यों करना चाहेगी। तार्किक रूप से करीना को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था, वह अकेले ही वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप को भी हरा सकती थी, तो उसे दूसरों के साथ सहयोग करने की क्या जरूरत थी? और यदि उसे किसी साथी की आवश्यकता भी थी तो उसे चुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? मुझे आपके सैनिकों की जरूरत है। फ्लीट, नहीं, आपके सैनिक। रॉकी की ओर देखते हुए करीना ने बिना किसी झिझक या घुमा फिराकर बात करते हुए सीधे कहा, मुझे वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े की परवाह नहीं है, लेकिन उनका जमीनी बेस काफी परेशानी भरा है। हालांकि इस एयर पायलट ग्रुप का पूरी तरह से सफाया करने के लिए उनके बेस को नष्ट करना जरूरी है। रॉकी, मुझे पता है कि तुमने बैकहिल गांव का मिशन पूरा कर लिया है। 100 से ज्यादा राक्षसों के लगातार हमलों का सामना करते हुए तुम्हारे सैनिक विजयी हुए, यही वह ताकत है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है जो उनके अड्डे पर कब्जा कर ले जबकि मैं उनके बेड़े को रोके रखूं। शायद यही उसका व्यक्तित्व था जिसने करीना को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार प्रकट करने पर मजबूर कर दिया। उसे रॉकी के बेड़े में नहीं बल्कि उसके सैनिकों में दिलचस्पी थी। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि आकाशीय युग में प्रवेश करने के बाद से वायुसेनाओं में उल्लेखनीय विकास और सुदृढ़ीकरण हुआ है, जिससे गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। हालांकि थल सेनाओं का विकास सीमित रहा है और थलीय युग की तुलना में इसमें बहुत कम अंतर है। मजबूत हवाई क्षमताएं लेकिन कमजोर जमीनी ताकतों के इस असंतुलन के कई कारण हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि उस जमाने का चलन था जब हर कोई आसमान में रहता था और लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो जाहिर है कि वे जमीनी ताकतों की बजाय हवाई ताकतों को ही प्राथमिकता देंगे। इतना ही नहीं, स्काई सिटी के ज्यादातर लॉर्ड्स ने जमीनी सेना भी छोड़ दी है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पहरेदारों को छोड़कर शहर में कोई संगठित सेना नहीं है, उनकी सारी ताकत और संसाधन बेड़े को विकसित करने में लगे हैं। मुझे याद है कि वेंसेल ने एक बार अपनी वसीयत में कहा था, एक बार लोग आसमान की ओर भाग गए तो उन्हें जमीन वापस लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा। शायद उन्हें इस स्थिति का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था। और वास्तव में दो युद्धों का असफल होना इस बात का प्रमाण है कि इसका सीधा संबंध सैनिकों की कमजोरी से था। आखिरकार तैरते हुए युद्धपोत शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे केवल जमीनी लड़ाई को ही प्रभावित कर सकते हैं। जमीनी लड़ाई को समाप्त करने के लिए भी आपको सैनिकों की आवश्यकता होगी। यही वजह थी कि करीना ने रॉकी के साथ सहयोग करने का फैसला किया। वह वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े का सामना करने में पूरी तरह से आश्वस्त थी, क्योंकि वह उन सिटी लॉर्ड्स में से एक थी जिनके पास जमीनी सेना के बिना केवल वायुसेना थी। नतीजतन वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेस उसके लिए एक कठिन चुनौती था। इसके विपरीत रॉकी इस मामले में एक बढ़त रखता था। हालांकि उसकी गार्ड कोर में केवल 300 से कुछ ज्यादा लोग थे, ये सभी गार्ड उच्च श्रेणी के सैनिक थे। थंडरहॉक सिटी के मूल गार्ड बैकहिल विलेज के मिशन के बाद अनुभवी सैनिक बन गए, जबकि बैकहिल विलेज के सैनिक कठोर योद्धा थे जो साल भर राक्षसों से लड़ते रहते थे। संयुक्त रूप से उन्होंने रॉकी के गार्ड कोर को अत्यंत दुर्जेय बना दिया। इसलिए करीना के जवाब के बाद रॉकी ने समझ में सिर हिलाया। वह समझ गया कि वह झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए उसने पूछताछ जारी रखी। आप युद्ध की लूट को कैसे बांटने की योजना बना रहे हैं? आप पैसा और सामान रख सकते हैं, लेकिन लोग मेरे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के करीना ने सीधे जवाब दिया, पैसा और सामान रॉकी का होगा लेकिन लोग उसके होंगे। ये प्रस्ताव स्पष्ट रूप से ऐसा था जिस पर उसने पहले ही विचार कर लिया था। ये सरल और अपरिष्कृत लग रहा था, फिर भी ये दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता था। थंडरहॉक शहर, जिसकी आबादी पहले ही लगातार दो बार बढ़ चुकी थी, को फिलहाल और लोगों की जरूरत नहीं थी। रॉकी को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए करीना ने सारा पैसा उसे देने की योजना बनाई, जबकि करीना को अपने शहर के विकास के लिए लोगों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने जनसंख्या को चुना। इस वितरण योजना के बारे में रॉकी ने सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह पूरी तरह संतुष्ट था। इस आवंटन में हीनता या श्रेष्ठता का कोई सवाल ही नहीं था, यह जरूरत के हिसाब से वितरित किया गया था और दोनों पक्षों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें प्रदान की गईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और करीना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने आपको गलत नहीं समझा है, आप और मैं एक ही धागे से बने हैं। ये देखकर कि रॉकी ने अंततः सिर हिला दिया, करीना ने पहली बार मुस्कुराहट दिखाई और उसके साथ टोस्ट करने के लिए अपने पास रखा वाइन का गिलास उठाया। हे भगवान, तुम दोनों लापरवाह पागल, मुस्कुराती हुई करीना के विपरीत बर्ग ने हार मानकर अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसका चेहरा असहायता से भरा हुआ था। दुर्भाग्यवश किसी भी आपत्ति के लिए बहुत देर हो चुकी थी और चून की रॉकी और करीना ने पहले ही एक उद्यम के लिए एक साथ आने का निर्णय ले लिया था, इसलिए उन तीनों ने बेकार की गपशप बंद कर दी और मामले पर चर्चा शुरू कर दी। करीना, क्या तुम्हें वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेस मिल गया है? करीना की ओर देखते हुए बर्ग ने पूछा। नए जमाने में समुद्री लुटेरों के समकक्ष होने के कारण एयर पायरेट ग्रुप का स्वाभाविक रूप से अपना एक अड्डा था। मर्सिनरी ग्रुप, जो एक औपचारिक संगठन होने के नाते स्काई सिटी में अपना अड्डा बना सकता था, के विपरीत एयर पायरेट ग्रुप, जो लुटेरों का एक गिरोह था, स्काई सिटी में जगह नहीं बना सकता था। उन्हें जमीन पर अपना अड्डा बनाना पड़ा और यहां तक कि वाइल्ड हॉर्स स्काई आइलैंड, जिसे स्काई सिटी का समर्थन प्राप्त था, भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन यह मत भूलिए कि अब तक जमीन पर राक्षसों का कब्जा हो चुका था। हवाई समुद्री डाकू समूह के लिए उस जमीन पर अपना अड्डा बनाना साहस की मांग करता था और बेहद खतरनाक भी था। आमतौर पर हवाई समुद्री डाकू समूहों के अड्डे बेहद गुप्त जगहों पर होते थे, जिनकी रक्षा करना तो आसान होता था लेकिन हमला करना मुश्किल। ये ठिकाने इतने छिपे होते थे कि इंसानों की तो बात ही छोड़िए, राक्षसों के लिए भी उन्हें ढूंढना मुश्किल होता था। मैंने इसे पा लिया है, शराब का एक घूंट लेने के बाद करीना ने सिर हिलाया। रॉकी के जवाब ने उसका मूड बहुत अच्छा कर दिया था और उसके जैसी औरत का व्यवहार खुशमिजाज होने पर और भी आकर्षक हो जाता है। उनका आधार खोजने के लिए मैंने शेडो एलायंस पर 1,00,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के खर्च किए, लेकिन यह इसके लायक था। अपना वाइन ग्लास नीचे रखते हुए करीना ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म करने पर तुली हुई थी, यदि वह उनके अड्डे का पता लगाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थी। करीना, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप और वाइल्ड हॉर्स सिटी के बीच कितना निकट संबंध है? जब हम उन पर हमला करेंगे तो क्या वाइल्ड हॉर्स सिटी अतिरिक्त सैनिक भेजेगा? इस बार रॉकी बोला। चूंकि वह करीना के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था, इसलिए उसे पूरी तैयारी करनी थी, कुछ बातें स्पष्ट करनी थी। वाइल्ड हॉर्स सिटी, हम, बेहतर होगा कि वे समर्थन करने आएं। वाइल्ड हॉर्स सिटी का जिक्र करते हुए करीना ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिखाई दी। चूंकि वाइल्ड हॉर्स सिटी वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का समर्थक था और स्वयं एक मध्यम आकार का स्काई सिटी था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। हालांकि जब रॉकी ने वाइल्ड हॉर्स सिटी का जिक्र किया तो करीना के मुंह से जानलेवा इरादे से भरी एक ठंडी सिसकारी निकली, लेकिन उसने जल्दी से कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि वाइल्ड हॉर्स सिटी फायर एल्फ सिटी से युद्ध करने जा रही है। जब वह समय आएगा तो उनके पास हमसे उलझने का समय नहीं होगा। फायर एल्फ सिटी, एक शहर जो पूरी तरह से कल्पित बौनों द्वारा नियंत्रित है। ये देखकर कि रॉकी फायर एल्फ सिटी से स्पष्ट रूप से अपरिचित था, बर्ग ने बगल से कहा, इस शहर का वाइल्ड हॉर्स सिटी से लंबे समय से दुश्मनी है, इसलिए वे अक्सर युद्ध करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। बर्ग के स्पष्टीकरण से रॉकी ने सिर हिलाया और उसे भी ज्यादा राहत महसूस हुई। अगर वाइल्ड हॉर्स सिटी मदद नहीं करने वाली होती तो वह और करीना जो ऑपरेशन कर रहे थे वह बेशक बहुत आसान होता। और इस तरह तीनों कुछ देर और बातें करते रहे जब तक कि शाम धीरे धीरे नजदीक नहीं आ गई। इसके तुरंत बाद करीना पहले चली गई। चूंकि रॉकी ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी जल्दी तैयारियां करनी पड़ी। उसके जाने के बाद रॉकी भी जाने की योजना बना रहा था क्योंकि उसे वापस जाकर गार्ड कोर को तैयार करना था। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में उसका बेड़ा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और रवाना होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बर्ग ने उसे रोक दिया। रॉकी, करीना की बकवास मत सुनो, वह वास्तव में पहले एक गठबंधन में शामिल हो चुकी है। करीना के जाने के बाद सिर्फ रॉकी और बर्ग ही भोज में बचे। जैसे ही बर्ग बोला, रॉकी ठिठक गया, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। हालांकि बर्ग ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी, 3 साल पहले जब वह पहली बार सिटी लॉर्ड बनी थी तो आत्मरक्षा के लिए वह एक छोटे से गठबंधन में शामिल हो गई। हालांकि यह गठबंधन बड़ा नहीं था बल्कि छोटे छोटे स्काई सिटी से बना था, फिर भी इसने कम से कम आश्रय तो दिया। उस समय करीना भी आजकल के कई दूसरे सिटी लॉर्ड्स की तरह ही थी, उनकी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं थी और आज की तुलना में उनमें आक्रामकता भी कम थी। वो बस शहर के विकास के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी और एक शांत स्थिर जीवन जीना चाहती थी। मैंने तो ये भी सुना था कि उस समय वो शादी के लिए एक राजकुमार ढूंढना चाहती थी। रोज सिटी उनका दहेज था। ये सुनकर बर्ग हंस पड़ा और रॉकी भी, जो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। किसी के लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल था कि करीना की शादी की इच्छा कैसी होगी। उनकी हंसी थमने के बाद बर्ग ने आगे कहा, उस समय उसने एक साल तक छोटे से गठबंधन के भीतर कड़ी मेहनत की, मुश्किल से एक युद्धपोत खरीदने लायक पैसा कमाया, लेकिन उसे वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने अपहृत कर लिया। ओह, ये सुनकर रॉकी को आखिरकार करीना और वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बीच की दुश्मनी की असली समझ आ गई। वह करीना की उस ग्रुप के प्रति गहरी नफरत देखकर हैरान था, क्योंकि आमतौर पर एक बार उनसे लूटे जाने के बाद इतनी दुश्मनी जायज नहीं होती, लेकिन अब उसे स्थिति समझ आ गई थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि बर्क को इस बारे में ज्यादा जानकारी थी, इसलिए उन्होंने आगे कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप द्वारा लूटे जाने के बाद करीना की स्थिति कितनी कठिन हो गई होगी। उसने अपनी सारी बचत लगभग खो दी थी। क्या वह तब गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी? क्या गठबंधन उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था? नहीं, सिर हिलाते हुए बर्ग ने संक्षिप्त और निश्चित उत्तर दिया। जाहिर है करीना ने गठबंधन की ओर रुख किया था, लेकिन वह छोटे स्काई सिटीज द्वारा बनाया गया एक छोटा सा गठबंधन था। वे वाइल्ड हॉर्स सिटी को भड़काने से डरते थे, इसलिए उन्होंने उसकी मदद नहीं की और उसे बाहर भी निकाल दिया। इतना गंभीर? रॉकी ने आश्चर्य से बर्ग की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि करीना को ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा होगा। इस पर बर्ग केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सके। इस घटना ने करीना को बहुत गहरा आघात पहुंचाया और इसके बाद ही वह बदल गई। वह अब वह लड़की नहीं रही जो राजकुमार से शादी करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का सपना देखती थी। वह एक सच्ची नगर प्रभु बन गई। उसने लगातार युद्ध लड़े, अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म किया, अपना बदला लिया, और इस प्रक्रिया में युद्ध के लिए उसकी प्रतिभा पूरी तरह से साकार हुई। आप जानते हैं, करीना जन्मजात युद्ध प्रिय है। वह बिना किसी के सिखाए ही सहज रूप से जानती है कि युद्ध कैसे जीता जाए। मुझे याद है मैंने तुम्हें बताया था कि उसे रोज सिटी की तानाशाह कहा जाता था, क्योंकि सिर्फ एक साल के समय में अपनी ताकत से उसने गठबंधन के उन सभी शहरों का सफाया कर दिया था जिन्होंने कभी उसे निष्कासित कर दिया था। तब से उसने एक तानाशाह की प्रतिष्ठा अर्जित की है। किसी भी छोटे स्काई सिटी का कोई भी नगर स्वामी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। महिलाओं में बदला लेने की तीव्र इच्छा होती है। ये कहने के बाद बर्ग ने रॉकी की ओर देखा। रॉकी, करीना के साथ तुम जो गठबंधन बना रहे हो उसके बारे में, अगर आपको लगता है कि आप वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म नहीं कर सकते, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप करीना को मना कर दें। हालांकि वह इस एयर पायरेट ग्रुप से जुनूनी है, वह जानती है कि वह आपकी मदद के बिना उन्हें हरा नहीं सकती और फिलहाल इसे छोड़ देना पसंद करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म करने के लिए उसके साथ सहयोग कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, क्योंकि यह मामला करीना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ग के शब्दों से रॉकी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह काफी देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसने मजाक में पूछा, बर्ग, लगता है तुम करीना की बहुत परवाह करते हो। बर्ग के अभी अभी दिए गए भाषण से रॉकी को न केवल करीना के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई, बल्कि वह ये भी स्पष्ट रूप से समझ गया कि बर्क का करीना के साथ एक असामान्य रिश्ता था, अन्यथा वह उसके सामने इतना कुछ नहीं बताता। निश्चित रूप से जब उनसे पूछा गया तो बर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ उनकी परवाह ही नहीं करता, बल्कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता का ऋणी हूँ। जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब करीना ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उस उपकार को हमेशा याद रखूंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि इस मामले में आप मुझसे ज्यादा सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, अचानक बर्ग रुक गया, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, फिर उसने अपनी बात जारी रखी। यदि कोई उसकी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत करता है, तो भले ही मैं युद्ध में कुशल नहीं हूं, फिर भी मैं अपने धन से उन्हें कुचल सकता हूं। बर्ग ने शांतिपूर्वक रॉकी पर अपनी नजरें गड़ाए रखी तथा एक दुर्लभ गंभीरता दिखाई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। और उसका अंतिम बयान चेतावनी से ज्यादा धमकी थी, जिसमें रॉकी को धमकी दी गई थी कि वह करीना के खिलाफ कोई योजना न बनाए। हालांकि रॉकी को इससे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत उसे वास्तव में बर्क का ये व्यवहार पसंद आया, या यूं कहें कि वह उसकी प्रशंसा करता था। नगर के स्वामी के स्तर पर षड्यंत्र और छल कपट सामान्य बात हो जाती है, और बर्क जैसा व्यक्ति जो करीना की रक्षा के लिए कठोर बातें कर सकता था, वास्तव में उनमें दुर्लभ था। इसलिए रॉकी जल्द ही मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा, और कुछ और कहने की जरूरत भी नहीं थी। उसने बस अपना वाइन ग्लास उठाया और बर्क की तरफ हिलाया, और इसके साथ ही दोनों ने अपनी अपनी ड्रिंक्स गटक ली। फिर रॉकी ने अपना ग्लास नीचे रखा, खड़ा हुआ और चला गया। शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, एक ड्रिंक ही काफी थी। बर्ग के सिटी लॉर्ड के महल से निकलकर रॉकी बेहद अच्छे मूड में गाड़ी में बैठा। करीना के साथ इस सहयोग ने उसकी एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि अगर वे वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का सफाया कर देते तो थंडरहॉक सिटी का संकट सुलझ जाता, और इतना ही नहीं, वह इससे अच्छी कमाई भी कर सकता था। रॉकी को इस नतीजे से स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। जहां तक वाइल्ड हॉर्स सिटी को भड़काने के संभावित परिणामों की बात है, सच कहूं तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। जितनी ज्यादा जुएं होंगी उतनी ही कम खुजली होगी, जितना ज्यादा कर्ज होगा उतनी ही कम चिंता होगी। चूंकि वह पहले ही मैरेंटे परिवार को भड़का चुका था, इसलिए उसे वाइल्ड हॉर्स सिटी की कोई परवाह नहीं थी, जो मैरेंटे परिवार से कहीं कमतर थी। रॉकी की राय में आगे भेड़ियों और पीछे बाघों से डरने और इधर उधर की चिंता करने के बजाय एक बड़ा जुआ खेलना बेहतर था, जिससे कम से कम थंडहॉक सिटी के गंभीर संकट का समाधान हो सके। इसलिए जब वह अपने थंडहॉक शहर में वापस आया तो उसने तुरंत सिटी लॉर्ड्स हॉल में सभी को इकट्ठा किया और खबर फैला दी। ये बहुत अच्छा है। जब रॉकी ने घोषणा की कि वह करीना के साथ मिलकर गार्ड कोर को संगठित करेगा, तो मोटे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह खुद को उछलकर चिल्लाने से नहीं रोक सका, हे प्रभु, हमें पिछली बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था और भाई बहुत समय से लड़ाई के लिए बेताब थे, इसलिए इस बार हम उस हवाई समुद्री डाकू समूह को एक ही झटके में खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। मोटे ने जिस अंतिम बड़ी लड़ाई का उल्लेख किया वह स्वाभाविक रूप से बैरन वोलिन के विरुद्ध थी। अब थंडहॉक सिटी न केवल पहले से ज्यादा मजबूत थी बल्कि काफी बेहतर भी हो गई थी। इसलिए अब उसे हर काम के लिए सिर्फ एक गार्ड कोर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रॉकी के संगठन में थंडहॉक सिटी का बेड़ा बहुत पहले ही गार्ड कोर से अलग होकर एक स्वतंत्र सेना बन चुका था। दूसरे शब्दों में थंडहॉक शहर के सैन्य बलों को प्रथम बेड़े के नेतृत्व वाली वायुसेना और गार्ड कोर के नेतृत्व वाली भूमि सेना में विभाजित किया गया था, जो क्रमशः नियमितीकरण की ओर बढ़ रहा था। बैरन वोलिन के साथ हुए महायुद्ध में रॉकी ने पूरे बेड़े को तैनात कर दिया था और गार्ड कोर ने असल में कुछ भी नहीं किया था, जिससे मोटे बहुत निराश था। कोर के गार्ड भी उतने ही हताश थे, बेड़े की जीत से ईर्ष्या और संकट की भावना दोनों महसूस कर रहे थे। पहले भी कहा गया था कि आसमान में थल सेना को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और वायुसेना उस जमाने की पसंदीदा सेना थी। यहां तक कि कई स्काई सिटीज में थल सेना भी नहीं थी। इसलिए जब रॉकी ने अपना पहला बेड़ा बनाया और उसे गार्ड कोर से अलग कर दिया, तो मोटे और लिन फैंग और अन्य लोगों को एक पूर्वाभास हुआ। उन्हें डर था कि रॉकी अन्य सिटी लॉर्ड्स की तरह धीरे धीरे अपने गार्ड कोर को छोड़ देगा। इसी संकट की भावना के कारण मोटे इतना उत्साहित हुआ जब उसे पता चला कि अगले लक्ष्य के लिए गार्ड कोर को जुटाना जरूरी है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद लिन फैंग को भी यही महसूस हुआ। दोनों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, रॉकी को यह साबित करने का एक मौका कि गार्ड कोर अभी भी उपयोगी है। जहां तक उनकी प्रतिक्रिया का सवाल है, रॉकी कुछ हद तक समझ सकता था, लेकिन मोटे और लिन फैंग कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, क्योंकि रॉकी गार्ड कोर को कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरे नगर स्वामी चाहे जो भी सोचे, रॉकी हमेशा से यही मानता था कि थल सेना एक अपरिहार्य और अपूरणीय शक्ति है। चाहे राक्षसों का सामना हो या अन्य आकाशीय नगरों का, थल सेना बहुत काम आएगी। मेरे आदेश का पालन करो। इसके बाद उन्होंने कई आदेश जारी किए। तुरंत प्रभाव से लिलिया को उसके पूर्व पद पर बहाल किया जाता है और वह मेरी निजी रक्षक बनी रहेगी। रक्षक दल के पूर्व प्रशिक्षक लिन फैंग को थंडहॉक सिटी रक्षक दल के उप कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाता है और पूर्व उप कप्तान मोटे को थंडहॉक सिटी रक्षक दल के कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाता है, जो रक्षक दल की कमान संभालेंगे। तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। रॉकी की नियुक्ति के बाद लिलिया गार्ड कोर के कप्तान के पद से हट गईं और उनकी निजी रक्षक बन गईं। मोटे अंततः गार्ड कोर के कप्तान बन गए और लिन फैंग को भी एक पद की पदोन्नति मिली, प्रशिक्षक से उप कप्तान के पद पर। रॉकी ने इस नियुक्ति की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। वह गार्ड कोर के कैप्टन का पद मोटे को सौंपने की योजना बना रहा था, लेकिन अब तक टाल रहा था क्योंकि मोटे की प्रतिष्ठा अभी पर्याप्त नहीं थी। मोटे थंडहॉक सिटी में आधे साल से ज्यादा समय से था और उसने गार्ड कोर में, खासकर हाल ही में, काफी विश्वसनीयता स्थापित कर ली थी। हालांकि लिलिया हाल ही में कैप्टन बनी हुई लग रही थी, मोटे मूल रूप से गार्ड कोर के सभी बड़े और छोटे मामलों को संभाल रहा था ताकि कैप्टन के पद पर उसका सहज परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। हालांकि नियुक्ति का अनुमान तो पहले से ही था, फिर भी मोटे को आधिकारिक तौर पर कैप्टन बनाए जाने पर वह काफी उत्साहित थे। लेकिन उन्होंने इस मामले में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया बल्कि लिन फैंग के साथ तुरंत गार्ड कोर में लौट आए और कोर के भाइयों को ये खुशखबरी सुनाने और सभी को जल्द से जल्द अपनी स्थिति सुधारने और युद्ध के लिए तैयार करने की योजना बनाई। जब बाकी लोग सिटी लॉर्ड्स हॉल से चले गए तो सिर्फ रॉकी और लिलिया ही बचे। रॉकी ने फिर एक गहरी सांस ली। क्या गलत, आह भरते रॉकी की ओर देखते हुए लिलिया कुछ उलझन में पड़ गई। ऑटन से फिर मिलना होगा, रॉकी ने सिर घुमाकर लिलिया की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। आप आगे बढ़ें, मुझे कवच को नियंत्रित करने का थोड़ा और अभ्यास करने के लिए समय चाहिए। जैसे ही लिलिया को पता चला कि रॉकी ऑटन से मिलने जा रहा है, उसने अचानक एहसास होने पर सिर हिलाया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसे पीछे छोड़कर भाग गई। अगर रॉकी को इस समय सबसे ज्यादा सिरदर्द किसी चीज से हो रहा था तो वो थंडहॉक सिटी का आर्थिक संकट ही था। लेकिन अगर कोई उसे उससे भी ज्यादा परेशान कर रहा था तो वो था वो बूढ़ा ऑटन। और अगर रॉकी आर्थिक संकट की तुलना ऑटन से करे तो वो यकीन से कह सकता है कि ऑटन ने उसे और भी ज्यादा सिरदर्द दिया है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब था। उसके विचार, उसका चरित्र, उसकी हरकतें, सब कुछ बेहद अजीब था। इतना अजीब कि रॉकी अब ऑटन से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ऑटन से बचने के लिए रॉकी ने एक हफ्ते से उसकी क्लास में जाना बंद कर दिया था, उससे बिल्कुल भी नहीं मिला था। कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑटन हर बार मिलने पर चौथी पीढ़ी के कवच की मांग करता, जो पूरी तरह से अनुचित हो गया था। रॉकी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बस उससे दूर ही रह सकता था। शुक्र है कि ऑटन के लिए बनाया गया नया शोध संस्थान आखिरकार बनकर तैयार हो गया। अपने शोध के लिए एक अलग जगह मिलने से ऑटन काफी शांत हो गया था, वरना रॉकी के लिए उसे बचना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इस बार उसे ऑटन से मिलना पड़ा, क्योंकि ऑटन वर्तमान में रून अनुसंधान में पूरी तरह से लगा हुआ था और रॉकी को गार्ड कोर के उपयोग के लिए रून उपकरण बनाने में उसकी मदद की आवश्यकता थी। इस स्थिति में रॉकी ने सिटी लॉर्ड्स हॉल में अकेले काफी समय बिताया और अंततः रून रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हुआ। ऑटन के लिए बनाए गए नए शोध संस्थान का नाम ऑटन ने रून अनुसंधान संस्थान रखा था। बेशक रॉकी समेत बहुत कम लोग ही इस नाम से वाकिफ थे। यह नगर प्रभु की हवेली के बगल में स्थित था और हवेली से निकलकर रॉकी को वहां तक पैदल पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा का समय लगा। अध्यापक, शिक्षक महोदय, क्या आप वहां हैं? संस्थान में प्रवेश करते हुए और उस शोध कक्ष के दरवाजे पर आकर, जिसका प्रयोग ऑटन अक्सर करता था, रॉकी ने दरवाजा खटखटाया, प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया और सावधानी से पूछा, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। अनुसंधान कक्ष से ऑटन की चिड़चिड़ी आवाज तुरंत आई और यह आवाज सुनकर रॉकी ने राहत में सिर हिलाया। ऑटन काफी समय से थंडहॉक सिटी में था, जिससे रॉकी को उसके गुस्से का अंदाजा हो गया था। इस चिड़चिड़ेपन को सुनकर रॉकी ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि ऑटन का मूड अभी भी खराब नहीं हुआ है। इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार धमाके के साथ जोरदार धमाका हुआ और वह उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ रॉकी दरवाजे से उछलकर गलियारे की दीवार से जोर से टकराया। चक्कर और असमंजस में वह पूरी तरह से हतप्रभ था। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जैसे ही रॉकी की दृष्टि सितारों से चमक उठी, उसने देखा कि ऑटन उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है और उसे जमीन से ऊपर उठाने में मदद कर रहा है। अरे बदमाश, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं एक प्रयोग कर रहा था? क्या तुम्हें चोट लगी है? ऑटन बड़बड़ाया और रॉकी को चारों तरफ से जांचा। जब उसे यकीन हो गया कि विस्फोट से रॉकी को कोई चोट नहीं आई है, तो उसने कुछ नहीं कहा और जोर से उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे रॉकी की आंखों के सामने तारों का एक तारामंडल उभर आया। तुम बदमाश, पहले से ही तीसरे स्तर के जादूगर हो और तुम एक जादुई ढाल भी नहीं बना सकते। मुझे कैसे पता चलता कि तुम क्या कर रहे थे? अपने सिर को जोर से हिलाते हुए रॉकी को चक्कर आने से उबरने में कुछ समय लगा, जिसके बाद उसने ऑटन की ओर एक दुखी नजर डाली। एक महीने पहले की बात है जब ऑटन ने उसे खुद अपनी जादुई शक्ति का अभ्यास करने का एक तरीका सिखाया था। एक महीने से ज्यादा अभ्यास के बाद रॉकी वाकई तीसरे स्तर का जादूगर बन गया था और जादुई ढाल भी बना सकता था। लेकिन उसने कैसे सोचा होगा कि ऑटन से मिलने के लिए उसे एक सक्रिय जादुई ढाल की जरूरत पड़ेगी? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, किस प्रयोग में जोखिम नहीं होता। ऑटन ने रॉकी की ओर घृणा से देखा, उसे घसीटकर उस अनुसंधान प्रयोगशाला में ले गया जिसमें अभी अभी विस्फोट हुआ था, और अस्त व्यस्त कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो और इसे साफ करो, मुझे एक और प्रयोग करना है। अव्यवस्थित प्रयोगशाला को देखकर रॉकी एक क्षण के लिए रुका, फिर उसने हताश होकर आह भरी और साफ सफाई में मदद करने लगा। आमतौर पर इस तरह का काम किसी नौकरानी के लिए ही होता, लेकिन चूंकि ऑटन का शोध रूनों से जुड़ा था, इसलिए बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो सकती थी। इसलिए वास्तव में वह शोध केंद्र में अकेला व्यक्ति था। सामान्य परिस्थितियों में ऑटन ऐसे काम खुद ही कर लेता, लेकिन रॉकी बदकिस्मत था कि उस समय वहां पहुंच गया और नगर स्वामी होने के नाते उसके पास मजदूर के रूप में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी, आप किस विषय पर शोध कर रहे हैं जिसके कारण यह विस्फोट हुआ? जमीन से गिरी हुई एक प्रायोगिक मेज को उठाते हुए रॉकी ने उत्सुकता से पूछा। विस्फोट के काफी शोर और प्रभाव के बावजूद प्रयोगशाला को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि मेजें गिर गई थीं, लेकिन वे नष्ट नहीं हुई थीं। मैं रूम्स में सुधार कर रहा हूं। क्या सुधारें? सुधार, क्या विस्फोट से आपकी आंखें बहरी हो गईं? ऑटन ने रॉकी को घूरते हुए गुस्से से कहा। रॉकी बिल्कुल बहरा नहीं था, उसे बस यकीन नहीं हो रहा था कि ऑटन वाकई रूम्स में सुधार कर सकता है। इसलिए थोड़ी देर के सदमे के बाद उसने जल्दी से पूछा, गुरुजी, क्या आपने पहले से ही सभी रूनों में महारत हासिल कर ली है? रॉकी के हिसाब से रूंस में सुधार करना नामुमकिन नहीं था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि उनमें पूरी तरह महारत हासिल हो। यही बात उसे हैरान कर रही थी। ज्यादा समय नहीं बीता था, ऑर्टन ने पहले ही सभी रूंस में महारत कैसे हासिल कर ली थी। बिल्कुल नहीं। इस पर ऑर्टन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस समय केवल 5वें स्तर के रूंस ही बना सकता हूँ। उच्चतम 6ठे स्तर के रूंस पर मैंने अभी तक पूरी तरह से शोध नहीं किया है, लेकिन इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही रून प्रणाली की पूरी संरचना सीख ली है। यह आश्चर्यजनक है, मेरे पैर का कमाल। बदबूदार लड़के, विंसल के शोध नोट्स में इसके बारे में विस्तृत विवरण है, क्या तुमने उन्हें ध्यान से नहीं देखा? ऑर्टन ने रॉकी के सिर पर मुक्का मारा और अपनी नाराजगी जाहिर की, और रॉकी केवल क्षमा याचना करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल सका। वास्तव में विंसल के शोध नोट्स में इस मामले पर विस्तृत विवरण था, लेकिन रॉकी के लिए यह सामग्री एक रहस्यमय ग्रंथ हो सकती थी, इसलिए उसने इसकी बारीकी से जांच नहीं की थी, हालांकि स्पष्ट रूप से ऑर्टन ने उन्हें पढ़ा था। इसके बाद ऑर्टन ने आगे कहा, दरअसल नोट्स के आखिरी हिस्से में विंसल ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था। हालांकि उन्होंने रूंस का आविष्कार किया और एक पूरी प्रणाली स्थापित की, लेकिन सीमित समय के कारण वे इसे पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सके। वास्तव में मैना रूंस के विकास की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, और जिन सुधारों की मैं बात कर रहा था वे इसी पहलू से शुरू होते हैं। तो क्या ये काम कर गया? सच कहा जाए तो ऑर्टन का स्पष्टीकरण समझने में आसान लग रहा था, लेकिन रॉकी अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया और उसने सीधे परिणाम के बारे में पूछ लिया। लेकिन जब उसने ये पूछा तो ऑर्टन ने परेशानी का भाव दिखाया और जादुई शक्ति से हवा में एक रून बना दिया। जादुई शक्ति से हवा में रून बनाना एक ऐसा हुनर था जिसे रॉकी ने एक बार विंसल द्वारा छोड़ी गई जादुई ऊर्जा छवियों में देखा था। ये क्षमता ही ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थी कि रूनों पर ऑर्टन का शोध काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा ऑर्टन ने जो रून बनाया था वह बिल्कुल अलग था। इस बार उसने जो रून बनाया था वह सिर्फ एक प्रथम स्तरीय रून था, लेकिन उसका रंग असाधारण था, एकदम साफ बर्फ सफेद। रॉकी ने पहले कभी इस रंग का रून नहीं देखा था। गुरुजी, ये रून, यह एक मौलिक रून है। अपनी रचना को देखते हुए ऑर्टन ने बताया, जैसा कि सभी जानते हैं मन मूलतः जादुई शक्ति है, और चून की जादुई शक्ति में तात्विक गुण हो सकते हैं, इसलिए मन में भी गुण हो सकते हैं। विंसल ने अपने शोध नोट्स में इसका उल्लेख किया था, लेकिन अपने सीमित समय और ऊर्जा के कारण उन्होंने केवल एक संभावित परिकल्पना प्रस्तुत की और वास्तव में उस पर शोध नहीं किया। मैंने रूनों में जो सुधार किया है वह हमारे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात रूनों को उनके अपने गुण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इस रून में मैंने बर्फ गुण वाली जादुई शक्ति का संचार किया है। एक बार सक्रिय होने पर ये बर्फ गुण वाली शक्ति उत्सर्जित कर सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, ऑर्टन ने अपने द्वारा खींचे गए रून को सक्रिय कर दिया, और जैसे ही रून सक्रिय हुआ उसमें से एक स्पष्ट ठंडक उत्पन्न हुई। ये दृश्य देखकर रॉकी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, फिर जिज्ञासा से भरकर वह बर्फ के गुण वाले रून के पास पहुंचा और उसके चारों ओर अपना हाथ घुमाया। वास्तव में उसे ठंडक का एहसास हुआ। कितना अविश्वसनीय! अपनी उंगलियों पर हल्की ठंडक महसूस करते हुए रॉकी उत्साहित हो गया। उसने ऑर्टन से इतनी चतुराई की उम्मीद नहीं की थी, न सिर्फ रनों को बेहतर बनाने की हिम्मत बल्कि उसमें कामयाब भी। गुरुजी, बधाई हो, आपके सुधार ने रून विकास को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अपने संयम पर लौटते हुए रॉकी ने जल्दी से ऑर्टन को बधाई दी। वह सिर्फ चापलूसी नहीं कर रहा था, वह ऑर्टन को सच्चे दिल से बधाई दे रहा था। दुर्भाग्यवश उसके बोलते ही ऑर्टन ने अपना सिर हिला दिया, न केवल रून को मिटा दिया बल्कि उदास होकर बोला, इसमें बधाई देने की क्या बात है, ये रून व्यवहारिक रूप से बेकार है। एक विशेषता प्राप्त करने के बाद रून स्वयं जादुई शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ये रून केवल दिखावे के लिए है, इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। इसके अलावा मेरी वर्तमान क्षमता के साथ मैं केवल प्रथम स्तरीय मौलिक रून्स ही खींच सकता हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। इसके साथ ही ऑर्टन ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए आह भरी, लेकिन उसकी यह प्रतिक्रिया बस यही थी कि वह खुद पर बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। दरअसल रूनों में यह नवाचार आज के जादुई ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही एक बेहतरीन जादुई तकनीक थी। ध्यान दें, यह कोई बेहतरीन रून तकनीक नहीं बल्कि बेहतरीन जादुई ऊर्जा तकनीक है। हालांकि ऑर्टन अपने स्वयं के सुधारों से असंतुष्ट थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके रून संवर्धन अपर्याप्त थे, बल्कि यह उनके स्वयं के लिए अत्यधिक उच्च मानकों से उपजा था। वास्तव में रूनों को छोड़ भी दें तो भी जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी सफलताओं को समकालीन समय में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। जैसा कि ऑर्टन ने स्वयं कहा था, मन का सार जादुई शक्ति है और चून की जादुई शक्ति तात्विक है, इसलिए ये तर्कसंगत है कि मन में भी तत्व होने चाहिए। हालांकि ये केवल एक सैद्धांतिक संभावना है और कोई भी इसे व्यवहारिक रूप में साकार नहीं कर पाया है। तार्किक रूप से ऐसे तात्विक गुणों का रूपांतरण इतना कठिन नहीं होना चाहिए, और वास्तव में ऐसा है भी नहीं। असली तकनीकी चुनौती गुणों के रूपांतरण में नहीं बल्कि वाहक में है, अर्थात जादुई पत्थर में। ये सर्वविदित है कि मैना को जादुई पत्थरों के भीतर संग्रहित किया जाना चाहिए, लेकिन जादुई पत्थरों के भीतर मौलिक मैना को कैसे संग्रहित किया जाए, या पत्थरों के भीतर संग्रहित मैना को उपयोग किए जाने पर तत्वों को प्रदर्शित करने योग्य कैसे बनाया जाए, यही असली चुनौती है। इस क्षेत्र में अनुसंधान निरंतर जारी है और किसी भी सफलता का निस्संदेह मन से जुड़ी सभी चीजों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, खासकर शून्य जादुई कवच पर, जिसका मन से गहरा संबंध है। ऐसी भी अफवाहें थीं कि छठी पीढ़ी के शून्य जादुई कवच का मुख्य केंद्र तत्व थे। ऑटन ने रूंस में जो सुधार किए थे वे ठीक इसी क्षेत्र में थे। रॉकी को यकीन नहीं हुआ कि यह महज संयोग था। मन के क्षेत्र में निपुण होने के नाते ऑटन जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान शोध दिशाओं से वाकिफ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शुरुआती सफलता भी मिली थी। शायद जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, मौलिक रूनों में अभी भी विभिन्न दोष थे तथा उनमें वास्तविक व्यवहारिकता का अभाव था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका शोध शीर्ष स्तर से कम था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि ऑटन मौलिक रूनों को तैयार करने के अपने दृष्टिकोण को सार्वजनिक कर दें, भले ही रूनों का विस्तार से उल्लेख किए बिना, तो ये जादुई ऊर्जा के पूरे क्षेत्र में सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉकी स्वाभाविक रूप से उसे प्रोत्साहित करना चाहता था। गुरुजी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एलिमेंटल रूनस अभी भी प्रयोग के शुरुआती चरण में हैं और हम सभी पहलुओं की खोज कर रहे हैं। कुछ खामियों का सामना करना सामान्य है, लेकिन एक बार जब हम गहरी समझ हासिल कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से इन मुद्दों और कमियों को हल करने के तरीके खोज लेंगे। हम, तुम छोटे बदमाश, अब तो तुम चापलूसी करना भी सीख गए हो। ये सुनकर ऑटन ने रॉकी को तिरछी नजर से देखा। उसके होंठ भींचे हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सुनकर काफी खुश था, इसलिए उसने बाद में पूछा, बोलो तुम छोटे बदमाश, तुम यहाँ किस लिए हो? क्या तुम मेरे लिए चौथी पीढ़ी का कवच लाए हो? हाँ हाँ, कम या ज्यादा? क्या, कहाँ है, मुझे दे दो। जैसे ही ऑटन ने रॉकी को चौथी पीढ़ी का कवच लाने की बात कहते सुना, वह तुरंत उत्साहित हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शिकारी की तरह हमला करने के लिए तैयार हो। यह, गुरुजी, मेरी बात सुनिए। ऑटन की आंखों में ऐसी उत्सुकता देखकर मानो वह झपटने ही वाला हो, रॉकी ने तुरंत अपने हाथों से उसे रोकने का इशारा किया। फिर उसने और करीना ने जो सहयोग किया था उसे साझा किया। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मेरे पास आपके लिए वह घटिया उपकरण डिजाइन करने का समय नहीं है। रॉकी ने जब ऑटन के साथ अपनी आगामी योजनाओं को उत्साहपूर्वक साझा किया तो ऑटन ने काफी देर तक उनकी ओर संदेह भरी निगाहों से देखा, फिर उदासीनता से जवाब दिया। रॉकी का इरादा था कि वह गार्ड कोर के लिए रून उपकरणों का एक सेट तैयार करने पर उसके साथ मिलकर काम करे, क्योंकि बैकहिल विलेज में मिशन के दौरान उनकी प्रभावशीलता पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी। इसलिए रॉकी ने पूरे गार्ड कोर को रून उपकरणों से लैस करने की योजना बनाई। इस बार उनका लक्ष्य राक्षस नहीं बल्कि एयर पायरेट ग्रुप हो सकता था, लेकिन खतरे का स्तर बैकहिल विलेज के मिशन के दौरान के खतरे से कम नहीं था। वास्तव में ये और भी अधिक खतरनाक हो सकता था। चूंकि हवाई समुद्री डाकुओं का गढ़ जमीन पर था, इसलिए ये साबित करना काफी था कि उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। आज के जमाने में जो कोई भी दानवों से भरी जमीन पर जिंदा बच सकता है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल बैकहिल गांव के सैनिकों की तरह है, उनमें से हर एक दुर्जय है। ये तथ्य कि एयर पायरेट ग्रुप ने भूमि पर अपना गढ़ स्थापित कर लिया उनकी ताकत का पर्याप्त प्रमाण है। ऐसी परिस्थितियों में रून उपकरण रॉकी के लिए महत्वपूर्ण हो गए और इसका महत्व इस बात को भी प्रभावित कर सकता था कि क्या वह एयर पायरेट ग्रुप के गढ़ को ध्वस्त कर सकता है। इसलिए ऑटन का सामना करते समय, जो कि बेपरवाह लग रहा था, रॉकी के पास स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी, अगर यह काम सही ढंग से हो जाए तो मेरे पास पैसे होंगे, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो क्या मैं आपके लिए चौथी पीढ़ी का कवच नहीं खरीद सकता? तो जाहिर है यह मामला आपसे संबंधित है। बकवास, तुम्हें मेरे लिए चौथी पीढ़ी का कवच खरीदना ही होगा, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस तरह की अनुचित प्रतिक्रिया से रॉकी की सांस फूलने लगी, लेकिन यह ऑटन के चरित्र के अनुरूप था, इसलिए रॉकी के पास उसे लगातार मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि उसने उसे हर तरह से धोखा देना और फुसलाना शुरू कर दिया। गुरुजी, जरा सोचिए, क्या आपने अभी अभी एलिमेंटल रून का विकास नहीं किया है? अब मौका है, आप एलिमेंटल रून की व्यवहारिकता का परीक्षण करने के लिए रून उपकरण बनाने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। परीक्षण? मुझे ये जानने के लिए परीक्षण करना होगा कि ये रून उपयोगी हैं या नहीं। ऑटन ने रॉकी को तिरस्कार भरी नजर से देखा और ठंडी घुड़की दी, जिससे वह बहुत घमंडी लग रहा था। ये सामान्य बात है, क्योंकि भले ही एलिमेंटल रून्स के विचार का उल्लेख विंसल के नोट्स में किया गया था, लेकिन यह ऑटन ही थे जिन्होंने इस अवधारणा को वास्तविकता में बदल दिया, इसलिए उन्हें एलिमेंटल रून्स की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए वास्तव में किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि इसके बाद भी ऑटन ने अधीरता से कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया मुझे परेशान करना, बस कुछ 100 उपकरण हैं, चलो अब शुरू करते हैं, जितनी जल्दी यह हो जाएगा उतनी ही जल्दी मुझे शांति मिलेगी। ये कहने के बाद उन्होंने रॉकी की खुशी का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे एक अन्य शोध प्रयोगशाला में ले गए। इटर्नल सिटी की अपनी पिछली यात्रा के दौरान रॉकी ने वास्तव में बड़ी संख्या में नकली जादुई ऊर्जा उपकरण खरीदे थे, जिसका उद्देश्य पूरे गार्ड कोर को रून उपकरणों से सुसज्जित करना था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण इसमें देरी हो गई थी। अब ये सभी टुकड़े रून अनुसंधान संस्थान में रखे गए थे, जहां ऑटन किसी भी समय प्रयोग के लिए उपलब्ध था। जब ऑटन रॉकी को एक अन्य अनुसंधान प्रयोगशाला में ले गया तो रॉकी ने देखा कि अंदर उपकरणों के सैकड़ों टुकड़े जमा थे। इन दर्जनों उपकरणों को मैंने पहले ही रूनों से उन्नत कर दिया है, जब समय आएगा तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, ऑटन ने लापरवाही से कहा। रॉकी को उपकरणों से भरी प्रयोगशाला में ले जाने के बाद कोने में रखे उपकरणों के ढेर की ओर इशारा करते हुए, हाल ही में उन्होंने इन्हें लापरवाही से संवारा था, इनकी संख्या लगभग एक दर्जन थी, सभी उच्च गुणवत्ता की थी, फिर भी उन्हें एक कोने में ऐसे फेंक दिया गया जैसे कि वे कबाड़ हों। इन टुकड़ों को देखकर रॉकी ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। ये सभी कीमती चीजें थीं और निश्चित रूप से उसके बनाए रून उपकरणों से भी ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उसने जल्दी से एक एक करके उपकरणों को प्रयोगशाला से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ऑटन का व्यवहार बहुत ही रूखा था, इसलिए कोई और चारा न होने के कारण कौन जाने उपकरणों पर रन लिखते समय वह कितना शोर मचा दे। इन तैयार उत्पादों को नष्ट होने से बचाने के लिए रॉकी को उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ा। इसके बाद वह और ऑटन एक पिता पुत्र की जोड़ी की तरह उपकरणों के ढेर में कूद पड़े और गार्ड कोर के लिए रून उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया। दूसरे स्तर के रून के साथ आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? रॉकी की ओर उपकरण का एक टुकड़ा फेंकने के बाद ऑटन ने लापरवाही से पूछा। कोई बात नहीं, रून्स बनाने की सफलता दर पहले ही 80% से अधिक हो चुकी है। 80%? और आप कहते हैं कि यह ठीक है? कभी मत कहना कि मैंने तुम्हें रून सिखाए हैं। रॉकी को घूरने के बाद ऑटन ने उपेक्षा से भरा चेहरा दिखाया, जो स्पष्ट रूप से रॉकी के निम्न आत्मा मानकों से असंतुष्ट था। लेकिन रॉकी का आत्मा मानक बिल्कुल भी कम नहीं था, क्योंकि 80% सफलता दर पहले से ही काफी ऊंची थी। और हाँ, यह मत भूलिए कि उसे थर्ड लेवल मैच बने अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ था। यानी सिर्फ एक महीने में ही रॉकी ने न सिर्फ सेकंड लेवल रून्स में महारत हासिल कर ली थी, बल्कि सफलता दर भी 80% से ऊपर बनाए रखने में कामयाब रहा था। यह इस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा और उसकी कड़ी मेहनत को दर्शाने के लिए काफी था। दरअसल ऑटन भी यह जानता था, उसकी यह उपेक्षा काफी हद तक उसके गुस्से की वजह से थी। थोड़ी देर तक जिद करने के बाद उसने कहा, इस बार दूसरे स्तर के रून से उपकरण को बेहतर बनाओ। गुरुजी, हर जगह द्वितीय स्तरीय रून्स का उपयोग करना, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? रॉकी ऑटन के अनुरोध से कुछ परेशान लग रहा था। हालांकि अब वह दूसरे स्तर के रून बना सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया पहले स्तर के रून जितनी परिष्कृत नहीं थी। इससे निस्संदेह रून उपकरण बनाने की गति धीमी हो जाती और रॉकी के पास इतना समय भी नहीं था। एक सप्ताह में उसके बेड़े की पूरी तरह से मरम्मत हो जाएगी और फिर वह करीना के साथ रवाना हो जाएगा। दुर्भाग्यवश ऑटन को अपनी कठिनाई समझ में नहीं आई और वह सीधे बैठ गए। द्वितीय स्तरीय रून्स प्रथम स्तरीय रून्स से ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत धीमा है तो यह आपकी अपनी समस्या है। अगर आप द्वितीय स्तरीय रून्स का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, और अगर मैं आपकी मदद भी करूं तो मैं आपको प्रतिदिन केवल 100 उपकरणों की ही मदद कर सकता हूं। इससे ज्यादा तो मेरे पास समय नहीं होगा, आपको खुद ही काम चलाना होगा। ये कहने के बाद ऑटन ने उपकरण का एक टुकड़ा उठाया और रॉकी पर कोई ध्यान दिए बिना उस पर रन बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रॉकी क्या कहता, वह बस मन ही मना है भर सका, फिर ईमानदारी से एक उपकरण उठाया और उस पर दूसरे स्तर के रून्स बनाने लगा। वह जानता था कि ऑटन उसे द्वितीय स्तरीय रूनों से परिचित कराने में मदद करने के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि वह अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे उनका आदि हो सके। लेकिन रॉकी सचमुच बहुत जल्दी में था। पिछली बार जब उन्होंने इटर्नल सिटी से उपकरण खरीदे थे तो वे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों थे। उस समय चूंकि रॉकी काफी अमीर था, उसने गार्ड कोर के सभी उपकरणों को रून उपकरणों से बदलने का फैसला किया, इसलिए उसने केवल कुछ टुकड़े नहीं खरीदे बल्कि उपकरणों के पूरे 300 सेट खरीदे। गार्ड कोर का वर्तमान संगठन 300 लोगों का था, इसलिए रॉकी ने उपकरणों के 300 सेट खरीदे। प्रत्येक सेट में कवच, ढाल और मानक लंबी तलवार तीन प्रमुख टुकड़ों के रूप में शामिल थी, और हेलमेट, कलाई गार्ड, पिंडली गार्ड तीन छोटे टुकड़ों के रूप में, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सेट में 6 टुकड़े थे, कुल 1800 टुकड़े। इन सभी उपकरणों को रून उपकरणों में बदलना निश्चित रूप से एक बड़ा काम था। यही कारण है कि रॉकी प्रथम स्तरीय रून का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। दुर्भाग्य से ऑटन को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने साफ कर दिया कि अगर रॉकी सेकंड लेवल रून्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वह मदद नहीं करेगा। ऑटन के चरित्र को देखते हुए वह ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम था और रॉकी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन उपकरणों पर चार द्वितीय स्तरीय रून बनाने से एक सितारा जादुई ऊर्जा गीय की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऑटन ने लापरवाही से एक उपकरण को रून उपकरण में बदल दिया और उसे कचरे की तरह इस्तेमाल करके एक तरफ फेंक दिया और रॉकी से कहा, गुरुजी क्या मैं कुछ और चित्र नहीं बना सकता? अपनी जादुई ऊर्जा कलम नीचे रखते हुए रॉकी ने ऊपर देखा और पूछा। वह स्पष्ट रूप से रूनों और जादुई पत्थरों के बीच रूपांतरण अनुपात जानता था। चार द्वितीय स्तरीय रूनों में एक छोटे जादुई पत्थर से थोड़ा ज्यादा मान होता था, लेकिन वह उपकरण पर और अधिक द्वितीय स्तरीय रून बनाना चाहता था। इससे उपकरण निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऑटन ने अपना सिर हिलाया। इस उपकरण की सामग्री बहुत घटिया है, ये केवल एक स्टार मैजिक एनर्जी गियर के मान को ही झेल सकता है, इससे अधिक इसे बर्बाद कर देगा। यदि आपके पास समय है तो आप लॉन्गस्वॉर्ड पर 5 द्वितीय स्तरीय रून बना सकते हैं, यही सीमा है। ओह, रॉकी ने सिर हिलाकर ऑटन की बात समझी। ऐसा लग रहा था कि ऑटन ने प्रयोगों के जरिए पहले ही उस उपकरण की ताकत को अच्छी तरह समझ लिया था, वरना वह ऐसा नहीं कहता। ऐसे में रॉकी के लिए आगे सवाल करने का कोई मतलब नहीं था। उसने बस उपकरण पर लगन से रून्स बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार लंबी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हुई। अगले हफ्ते रॉकी ने अपना लगभग सारा समय रून उपकरण बनाने में लगा दिया और हर दिन बड़ी मात्रा में खुद ही उपकरण बनाता रहा। इस प्रक्रिया में द्वितीय स्तरीय रूनों पर उसकी महारत स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से बेहतर हुई और रूनों की उसकी समझ भी। दूसरे स्तर के रून्स में और ज्यादा निपुणता हासिल करना निस्संदेह रॉकी की अपनी प्रतिभा का ही नतीजा था। ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी किस्मत में लिखा था। उसमें वाकई रून्स की एक प्रतिभा थी जिसे ऑटन को भी मानना पड़ा। हालांकि जब बात रून्स की उनकी समझ की आई तो ये पूरी तरह से ऑटन की शिक्षाओं के कारण था। हालांकि ऑटन लगातार कहता रहा कि उसके पास समय नहीं है और वह रोजाना सिर्फ 100 रून उपकरण ही बना सकता है, लेकिन असल में उपकरण बनाने के बाद वह वहां से नहीं गया, बल्कि वह रॉकी के साथ रहा और उसे राह दिखाता रहा। साफ शब्दों में कहें तो उसकी लगातार परेशान करने वाली बकबक के बीच। दरअसल ऑटन के निरंतर मार्गदर्शन में रॉकी ने उसे एक हफ्ते में उतना सीखा जितना उसने पूरे एक महीने की कक्षाओं से नहीं सीखा था। बेशक यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि रॉकी हर दिन ऑटन के साथ बिताता था और लगातार सीखता रहता था। पूरे एक हफ्ते के बाद आखिरकार यह बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। रॉकी ऑटन के साथ मिलकर सभी 300 उपकरणों को रून उपकरणों में बदलने में कामयाब रहे। साथ ही रून उपकरण पूरा होने के अगले ही दिन रॉकी के बेड़े का भी नवीनीकरण किया गया। 2 बड़े युद्धपोतों और 7 तो ही जहाजों की पूरी तरह से मरम्मत की गई और वे गोदी से बिल्कुल नए जैसे उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही उपकरण और युद्धपोत सभी तैयार हो गए और रॉकी एक बार फिर करीना से मिला। इस बार दोनों की मुलाकात थंडरहॉक सिटी में सिटी लॉर्ड्स मेंशन में हुई। आपका शहर अच्छा है, रॉकी के सामने बैठी करीना ने बढ़िया लाल चाय की चुस्की लेते हुए कहा। चूंकि दोनों पक्ष सहयोग की तैयारी कर रहे थे, रॉकी ने भी काफी ईमानदारी दिखाई। उसने करीना को अपने सिटी लॉर्ड के महल में आमंत्रित किया था और उसे पहले ही शहर का दौरा भी करा दिया था। आप बहुत दयालु हैं, सब कुछ अभी भी विकसित हो रहा है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं निश्चित रूप से आपके रोज सिटी का दौरा करूंगा। जब तक हम वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप को खत्म कर सकते हैं तब तक आगे भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, करीना ने रॉकी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसके निहितार्थ स्पष्ट थे। वह रॉकी को बता रही थी कि यदि यह सहयोग सफल रहा तो उसके और उसके बीच तथा थंडरहॉक सिटी और रोज सिटी के बीच संबंध और भी गहरे हो जाएंगे। तो फिर करीना ने सीधे पूछा, सब कुछ कैसा है? सब तैयार है? हम किसी भी समय प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सुनकर करीना मुस्कुराई जिससे उसकी उत्सुकता जाहिर हुई। चलो कल चलते हैं। प्रस्थान का कार्यक्रम तय करने के बाद रॉकी और करीना उसी शाम बर्ग को विदाई देने के लिए लिंग्यू शहर गए। इस अवसर पर बर्ग ने विशेष रूप से एक असाधारण भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें तीनों शहरों के सभी प्रमुख लोगों को उन्हें विदाई देने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही उन्होंने विदाई के इस अवसर का उपयोग शहरों के बीच गहरी समझ और संवाद को बढ़ावा देने के लिए किया, जिसे एक ही तीर से 2 निशाने लगाने जैसा माना जा सकता है। अगले दिन रॉकी के थंडरहॉक सिटी और करीना के रोज सिटी ने अपनी उड़ान मोड को सक्रिय कर दिया और लिंग्यू सिटी के हवाई क्षेत्र को एक साथ छोड़ दिया। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेस की ओर बढ़ रहे थे। आकाश में एक साथ उड़ते 2 स्काई सिटीज एक दुर्लभ और शानदार दृश्य था। दुर्भाग्य से अब धरती पर राक्षसों का कब्जा हो चुका था और कोई भी इस भव्य दृश्य की सराहना नहीं कर पा रहा था। कुछ राक्षसों ने इसे देखा भी, लेकिन उन्होंने बस 1-2 बार आकाश की ओर दहाड़ लगाए और बस। क्या आपकी सेना अच्छी तरह से व्यवस्थित है? रॉकी के साथ थंडरहॉक के डेक पर खड़े होकर करीना ने पूछा। हालांकि उस समय दोनों शहर साथ साथ उड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक नहीं था। इसलिए इन परिस्थितियों में रॉकी ने थंडरहॉक को अपने और करीना के मिलने के लिए एक मंच के रूप में पेश किया। तुम्हें मेरे सैनिकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, करीना की ओर देखते हुए रॉकी मुस्कुराया। करीना, तुम थोड़ी ज्यादा घबरा रही हो। दरअसल करीना उस समय काफी घबराई हुई थी, लेकिन ये समझ में आता था। आखिरकार बर्ग ने कहा था कि दूसरों की नजर में वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप शायद सिर्फ डाकुओं का एक गिरोह हो, लेकिन करीना के लिए उनका मतलब इससे कहीं ज्यादा था। ये समूह उनके दिल में एक गांठ की तरह था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे वह हमेशा से मिटाना चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना घटे, रॉकी की ओर देखते हुए करीना ने भावशून्यता से कहा। चिंता मत करो, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगी, रॉकी आत्मविश्वास से भरा हुआ हंसा। उसे अपने गार्ड कोर पर दो कारणों से बहुत भरोसा था। पहला, उसने गार्डों को नए बनाए गए मन उपकरणों के सभी 300 सेट बांट दिए थे और हर एक को एक नया सेट दिया था, जिससे निस्संदेह गार्ड कोर की समग्र शक्ति में काफी वृद्धि हुई होगी। इसके अलावा बैकहिल गांव में मिशन के बाद बिना किसी युद्ध रिकॉर्ड या किसी लड़ाई में भाग लिए गार्ड्स के सार्वजनिक रूप से गायब हो जाने के बावजूद उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती थी। इसके विपरीत मोटे और लिन फैंग के नेतृत्व में गार्ड कोर ने इस खाली समय में गहन प्रशिक्षण लिया था। युवा सैनिक एक वास्तविक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्सुक थे। इसलिए न केवल करीना को गार्ड कोर से बहुत उम्मीदें थीं, बल्कि रॉकी भी उनके लिए उत्सुक था। ऐसा होने पर रॉकी स्वाभाविक रूप से आश्वस्त महसूस करने लगा। करीना भी इस आत्मविश्वास को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप पर चर्चा शुरू कर दी। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेस ट्रेसलेस बैटलफील्ड में छिपा हुआ है। ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र, ट्रेसलेस की लड़ाई का स्थान। जब करीना ने बताया कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का अड्डा कहाँ छिपा है, तो रॉकी ने पहले तो आश्चर्य से पलकें झपकाई, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि करीना ने केवल पुष्टि में सिर हिलाया। करीना को सिर हिलाते देख रॉकी ने तेजी से सांस ली। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप में निश्चित रूप से ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में छिपने की हिम्मत थी। ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र किस प्रकार का स्थान था, इस मामले को स्पष्ट करने के लिए ट्रेसलेस की लड़ाई का उल्लेख करना होगा। ये लड़ाई इतनी प्रसिद्ध थी कि साक्षर हो या नहीं, हर कोई इसके बारे में निश्चित रूप से जानता होगा, क्योंकि यह युद्ध इस संसार के लोगों द्वारा राक्षसों के विरुद्ध छेड़ा गया पहला महान युद्ध था। 100 साल से भी ज्यादा पहले दानव अचानक दूसरी दुनिया से उतरे और तेजी से जमीन के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और यह सच भी है। फिर भी इस कथन से यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि लोगों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। वास्तव में भूमि पर राक्षसों के कब्जे के दौरान लोगों ने न केवल प्रतिरोध किया, बल्कि एक विशाल युद्ध में भी भाग लिया। वह लड़ाई ट्रेसलेस की लड़ाई थी। चूंकि यह इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है, इसलिए इस युद्ध के विभिन्न विवरण लंबे समय से किंवदंती बन चुके हैं तथा उनकी सत्यता का पता लगाना कठिन है। हालांकि घटनाओं का विवरण सत्यापित करना कठिन हो सकता है, इस युद्ध से संबंधित आंकड़े पूरी तरह से संरक्षित हैं, और इन बेजान आकृतियों के माध्यम से ही उस विशाल युद्ध के पैमाने को समझना संभव है। ये युद्ध पूरे 3 महीने तक चला, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया, जिनमें मनुष्य, कल्पित बौने, पशु मानव बौने और कई अन्य प्रजातियां शामिल थीं। ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध के लिए दुनिया की सभी प्रजातियां एकजुट हुईं और एक अभूतपूर्व विशाल मित्र सेना का निर्माण हुआ। युद्ध के उन 3 महीनों के दौरान मित्र देशों की सेनाएं लगभग रोज ही दानवों से भिड़ती थीं। अभिलेखों के अनुसार सबसे छोटे स्तर की लड़ाई में भी 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते थे, और वह भी सिर्फ मित्र देशों की सेना की तरफ से। 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों वाली बड़ी लड़ाइयां आम थीं, और जब अंतिम निर्णायक लड़ाई हुई तो मित्र राष्ट्रों द्वारा तैनात सैनिकों की संख्या चौंका देने वाली 10 लाख तक पहुंच गई। इस पैमाने का युद्ध अभूतपूर्व था और आज भी बेजोड़ है। संभवतः ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने का संघर्ष है, और यह वही स्थान है जिसे अब ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आज 100 साल बाद ट्रेसलेस बैटलफील्ड एक जगह का नाम बन गया है, और वो भी एक मृत भूमि का नाम। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस साल का युद्ध बहुत भीषण था, जिसने भूदृश्य को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था और युद्ध क्षेत्र के वातावरण को बेहद कठोर बना दिया था। न केवल यह एक निर्जन क्षेत्र बन गया है, बल्कि दानव भी वहां जाने से कतराते हैं। वास्तव में इतनी खतरनाक जगह पर छिपने के लिए, रॉकी ने गहरी भौहें चढ़ाई और करीना की ओर देखे बिना न रह सका। अगर मुझे ठीक से याद है तो स्काई सिटी की उड़ान ट्रेसलेस बैटलफील्ड के ऊपर से प्रतिबंधित है। हम अंदर कैसे जाएंगे? किताबों में ट्रेसलेस बैटलफील्ड के बारे में कुछ पढ़कर रॉकी को याद आया कि इस मृत भूमि का मौसम बहुत खराब था, जिससे स्काई सिटी में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था। तो वे अंदर कैसे जाएंगे? स्काई सिटी तो काम नहीं करेगी, लेकिन स्काईशिप काम कर सकती है, करीना ने उसकी चिंताओं का ऐसे जवाब दिया जैसे उसने पहले ही उन पर विचार कर लिया हो। फिर आगे बताया, ट्रेसलेस बैटलफील्ड का मौसम वाकई बहुत खराब है, लेकिन अगर स्काईशिप कम ऊंचाई पर उड़ान भरता रहे तो भी वह वहां से निकल सकता है। हमें स्काई सिटी को युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में ही पार्क करना होगा। क्या आपको यकीन है?
निश्चित, करीना ने पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाया, काफी आत्मविश्वास से भरी हुई। फिर भी उसने रॉकी को देखा। रॉकी, बेहतर होगा कि तुम अपने गार्ड कोर को इस बारे में सूचित करो और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करो। आखिरकार ट्रेसलेस बैटलफील्ड का मौसम भले ही खराब हो, लेकिन जमीन पर हालात और भी खराब हैं। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का मुख्यालय अप्रत्याशित रूप से ट्रेसलेस बैटलफील्ड में छिपा हुआ था, जिससे रॉकी को कुछ परेशानी हुई। ट्रेसलेस बैटलफील्ड का माहौल इतना कठोर था कि वहां गए बिना भी रॉकी ने उसके बारे में काफी कुछ सुन लिया था। इसलिए थंडरहॉक सिटी लौटकर उसने तुरंत मोटे और लिन फैंग को अपने पास बुला लिया।
सर, ट्रेसलेस बैटलफील्ड, मैं भी वहां नहीं गया हूं।
आप भी नहीं गए?
नहीं,
सिर हिलाते हुए मोटे ने असहाय भाव दिखाया। ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के बारे में उसकी जानकारी भी अफवाहों तक ही सीमित थी, क्योंकि वह वहां कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं गया था। हालांकि वह कभी दक्षिण से उत्तर की ओर भटकने वाला एक दानव शिकारी था, फिर भी वह एक अकेला व्यक्ति था जिसकी एक बेटी भी थी जिसका उसे ध्यान रखना था। वह कभी भी ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र जैसे खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि वहां राक्षसों की अधिक आबादी नहीं थी, तो फिर एक दानव शिकारी का वहां क्या काम होगा। इससे अब रॉकी को परेशानी होने लगी, जिसने मान लिया था कि मोटे ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में गया होगा ताकि उन्हें कम से कम उस क्षेत्र के बारे में कुछ पूर्व जानकारी मिल सके, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई।
सर, मैं पहले भी ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में गया हूँ।
जैसे ही रॉकी को सिरदर्द महसूस हुआ, लिन फैंग ने अचानक बगल से बात की और रॉकी को बताया कि वह ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में गया था।
आप थे?
लिन फैंग को आश्चर्य से देखते हुए रॉकी को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। क्या वह सचमुच ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में गया था? क्या वह हमेशा बैकहिल गांव में ही नहीं था?
सर, हालांकि ट्रेसलेस बैटलफील्ड का वातावरण बहुत कठोर है, राक्षस काफी दुर्लभ हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र के आसपास अभी भी कुछ लोग रहते हैं।
कुछ साल पहले मैं एक गांव देखने के लिए युद्ध क्षेत्र से गुजरा था।
लिन फैंग के शब्द रॉकी के लिए आश्चर्यजनक और आश्वस्त करने वाले थे। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि लिन फैंग ने कभी बैकहिल गांव नहीं छोड़ा था। आश्वस्त करने वाले इसलिए क्योंकि चूंकि लिन फैंग ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में गया था, इसलिए वे कम से कम उस क्षेत्र के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे।
लिन फैंग, क्या ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र का वातावरण वास्तव में वैसा ही है जैसा कि अफवाहों में वर्णित है?
नहीं
सर, रॉकी के सवाल का सामना करते हुए लिन फैंग ने सीधे अपना सिर हिलाया। ट्रेसलेस बैटलफील्ड का वातावरण अफवाहों से भी अधिक गंभीर है।
महोदय, 100 साल पहले उस महान युद्ध ने एक अमित जादुई ऊर्जा तूफान छोड़ा था, जिससे स्काई सिटी में प्रवेश करना असंभव हो गया था। यहां तक कि राक्षस भी वहां जाने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र बेहद खतरनाक बना हुआ है। युद्ध क्षेत्र में चलने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण जादुई ऊर्जा तूफान की चपेट में आ सकता है और उसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। इसके अलावा वह युद्ध क्षेत्र बहुत भयावह है।
भयावह?
ये शब्द सुनकर रॉकी ने मोटे के साथ नजरें बदली, फिर वे दोनों लिन फैंग की ओर देखने लगे। जाहिर है कि वे समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब है।
सर, मुझे विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार जब मैं युद्ध क्षेत्र में गया था तो उस दौरान कई अजीब चीजें घटित हुई और हमारे समूह के कई लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के मारे गए।
अच्छा, ऐसा है। लिन फैंग की अस्पष्ट व्याख्या न केवल रॉकी को कुछ भी स्पष्ट करने में विफल रही, बल्कि उसे और भी उलझन में डाल दिया।
हालांकि लिन फैंग के संक्षिप्त विवरण से रॉकी कम से कम एक बात समझ गया, ट्रेसलेस बैटलफील्ड निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं थी। इस परिणाम ने निस्संदेह आगामी ऑपरेशन पर ग्रहण लगा दिया, इसलिए रॉकी ने तुरंत मोटे और लिन फैंग को गार्ड कोर में वापस लौटने और गार्डों को उनके सामने आने वाली हर बात समझाने का निर्देश दिया, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और इन 3 दिनों के बाद आकाश में एक साथ उड़ते हुए दो शहर अंततः रुक गए, क्योंकि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे।
ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र वे आ गए थे। करीना की योजना के अनुसार ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंचने पर सभी को स्काई सिटी छोड़ना था और युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्काईशिप पर सवार होना था। चूंकि यह व्यवस्था बहुत पहले ही कर दी गई थी, इसलिए जब स्काई सिटी बंद हो गई थी तो रॉकी ने गार्ड कोर को स्काईपोर्ट पर पहले ही इकट्ठा कर लिया था।
सर, यह एक जादुई ऊर्जा तूफान है।
रॉकी के बगल में खड़े होकर लिन फैंग ने दूरी की ओर इशारा किया।
दरअसल बिना याद दिलाए भी रॉकी ने पहले ही उस जादुई ऊर्जा तूफान को पहचान लिया था जिसका वह जिक्र कर रहा था।
रॉकी की नजर दूर आसमान में एक विशाल काले बादल पर पड़ी। उस बादल ने सूरज को ढक रखा था, बेहद घना, और दूर से भी रॉकी बादल के भीतर बिजली की चमक और आग के गोले चलते हुए साफ देख सकता था, मानो वह बादल कोई जीवित प्राणी हो। यह विशाल बादल जादुई ऊर्जा तूफान था जिसका उल्लेख लिन फैंग ने किया था, जो मुख्य अपराधी था जिसने ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र को बंजर भूमि में बदल दिया था। 100 साल से भी ज्यादा पहले इस अभूतपूर्व युद्ध में न सिर्फ अनगिनत प्रतिभागी शामिल थे, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बेजोड़ थी।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं में हजारों महाजादूगर और दर्जनों जादूगर थे जिनकी क्षमता लगभग देवताओं जैसी थी। रॉकी के सामने जादुई ऊर्जा तूफान जादूगरों द्वारा एक साथ मिलकर किया गया अंतिम जादू था। ट्रेसलेस युद्धक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में ये जानते हुए कि हार अवश्यंभावी है, मित्र देशों की सेनाओं ने 10 से अधिक जादूगरों को इस जादुई ऊर्जा तूफान का निर्माण करने के लिए भेजा, यह आशा करते हुए कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली यह परम जादू राक्षसों की प्रगति को रोक देगा। इन जादूगरों के प्रयासों से मित्र सेनाओं की योजना सफल हुई। दुर्भाग्य से दानव ज्यादा देर तक नहीं रुके, अंततः उन्होंने मित्र सेनाओं को पराजित कर दिया और उस भूमि पर कब्जा कर लिया। विडंबना यह है कि जिस जादुई तूफान को दानवों को रोकना चाहिए था वह आज तक युद्धक्षेत्र में स्थायी रूप से बना रहा, कभी समाप्त नहीं हुआ। इस भयानक तूफान के कारण ट्रेसलेस युद्धक्षेत्र के ऊपर का हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन बन गया था, स्काई सिटी नष्ट हुए बिना उसके करीब नहीं आ सकता था। हालांकि सौभाग्य से इतने सालों बाद भी जादुई ऊर्जा का तूफान अभी भी मौजूद था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी विनाशकारी शक्ति नहीं रही। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्र अभी भी खतरनाक थे, लेकिन निचली ऊंचाई वाले क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, कम से कम आकाशयान तो उड़ सकते थे। सभी लोग जहाज पर चढ़ो। स्काईपोर्ट पर खड़े होकर रॉकी ने कुछ देर तक जादुई ऊर्जा तूफान को देखा, फिर वास्तविकता में वापस आकर आदेश जारी किया। अब जब वे ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके थे और कूच करने ही वाले थे तो चिंता करना बेकार था। चाहे उन्हें अनिच्छा से ही सही, आगे बढ़ना तो था ही। उनके आदेश का पालन करते हुए पूरी तरह से तैयार गार्ड कोर तुरंत थंडहॉक और दो एस्कॉर्ट जहाजों पर सवार हो गया। सभी सदस्यों के जहाज पर सवार होते ही दोनों बड़े युद्धपोत स्काईपोर्ट से उड़ान भरकर डिफेंसिव नेट से बाहर निकल गए। चूंकि इस बार मुख्य भूमिका गार्ड कोर की थी, रॉकी अपना पूरा बेड़ा नहीं लाया, बल्कि सैनिकों के परिवहन और हवाई कवर के लिए केवल दो युद्धपोत तैनात किए। बाकी का काम करीना ने संभाला। इस बीच जब थंडहॉक और एस्कॉर्ट जहाज क्रमिक रूप से थंडहॉक शहर के रक्षात्मक जाल से बाहर निकले तो करीना का बेड़ा भी आकाश में उभरा और धीरे धीरे रॉकी के बेड़े के साथ जुड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह इस करीना में सचमुच बहुत ताकत है। थंडहॉक के धनुष पर रॉकी के साथ खड़ी शून्य जादू कवच पहने ले लिया करीना के बेड़े को आते देख टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी, वह स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी के बेड़े के आकार से प्रभावित थी। वास्तव में करीना की असली क्षमताओं को देखकर न केवल वह बल्कि रॉकी भी आश्चर्यचकित हुआ। रोज सिटी से आने वाला और धीरे धीरे उनके पास पहुंचने वाला बेड़ा दो डिवीजनों का था। प्रत्येक डिवीजन में ठीक 20 जहाज थे, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रमुख जहाज, 3 अनुरक्षण जहाज और 16 टोही जहाज थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों डिवीजनों का प्रत्येक युद्धपोत चौथी पीढ़ी का था। ये करीना की ताकत थी, छोटे स्काई सिटीज में सर्वोच्च क्षमता। करीना को अपना पूरा बेड़ा तैनात करते देख रॉकी मन ही मन उसकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे मानना पड़ा करीना अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसे याद आया कि बर्ग ने लिंग्यू शहर में कहा था कि करीना रोज सिटी की तानाशाह के रूप में जानी जाती है। उसकी जबरदस्त ताकत इतनी ज्यादा थी कि दूसरे छोटे स्काई सिटी के सरदार उससे सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे, उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। उस समय रॉकी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये सोचकर कि करीना भले ही ताकतवर हो पर वह अभी भी एक छोटे स्काई सिटी के स्तर की ही है। वह असल में कितनी ताकतवर हो सकती है? लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने रोज सिटी के तानाशाह को कम करके आंका था, क्योंकि इन दो बेड़े द्वारा प्रदर्शित शक्ति अकेले ही अन्य छोटे स्काई सिटीज को बिना किसी समस्या के नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ये 40 से ज्यादा चौथी पीढ़ी के युद्धपोत थे, जिनमें दो प्रमुख जहाज और 6 अनुरक्षक जहाज शामिल थे। इतनी ताकत के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि करीना ने दावा किया था कि वह वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े को हरा सकती है। ये सब हंगामा क्यों हो रहा है? अगर आप मुझे रिमॉडलिंग पर पूरी तरह से ध्यान देने दें तो आपका थंडहॉक वहां के फ्लैगशिप से ज्यादा कमतर नहीं होगा। जब रॉकी और अन्य लोग लगातार करीना के बेड़े की प्रशंसा कर रहे थे तभी एक घमंडी आवाज आई। ये ऑटन था जो जहाज के साथ यात्रा कर रहा था। ऑटन ने रॉकी के ट्रेसलेस बैटलफील्ड की ओर जाने की बात सुनकर उसके साथ चलने की जिद की और रॉकी उसे मना नहीं सका, इसलिए उसने उसे जहाज पर चढ़ने दिया। आखिरकार ऑटन एक महाजादूगर था और चाहे वह मदद कर सके या नहीं, कम से कम किसी और की उसकी देखभाल करने की जरूरत तो नहीं थी। उस समय ऑटन भी धनुष तक आया, रॉकी के साथ कतार में खड़ा होकर करीना के बेड़े को देख रहा था। फिर उसने उपहास किया और कहा, बस कुछ दर्जन स्क्रैप जहाज, आप सभी ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने कभी दुनिया नहीं देखी है। ये शब्द कहने के बाद वह रॉकी की ओर देखने लगा। बच्चे, तुम मुझे चौथी पीढ़ी का फ्लैगशिप कब दिलवाओगे? मेरे पास कुछ विचार हैं जिन्हें मैं परखना चाहता हूँ। गुरुजी, मुझे लॉर्ड करीना से मिलने जाना है, मैं चला जाऊंगा। जिस क्षण ऑटन ने वास्तव में चौथी पीढ़ी के फ्लैगशिप के लिए कहा, रॉकी डर गया और जल्दी से थंडहॉक से कूद गया और करीना के फ्लैगशिप की ओर दौड़ा। करीना के कोड रोज पर सवार होकर दोनों ने संक्षिप्त चर्चा की और देरी न करने तुरंत नीचे उतरने और ट्रेसलेस युद्धक्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। कुछ ही देर बाद 40 से अधिक युद्धपोतों के एकत्रित बेड़े ने धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम कर ली और फिर ट्रेसलेस युद्धक्षेत्र में उड़ गए। जादुई ऊर्जा तूफान से यथासंभव बचने के लिए 40 से अधिक युद्धपोत भूमि से केवल 100 मीटर की ऊंचाई पर उतर गए। इस ऊंचाई पर उड़ान भरने से युद्धपोतों पर जादुई ऊर्जा तूफान का प्रभाव बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी सभी युद्धपोतों ने अपने रक्षात्मक जाल फैला दिए, क्योंकि हालांकि प्रभाव मामूली था, फिर भी यह संभावना थी कि वे जादुई ऊर्जा तूफान से लीक होने वाले मैना से प्रभावित हो सकते थे। जैसे ही बेड़ा धीरे धीरे ट्रेसलेस युद्धक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, सभी को ऐसा महसूस हुआ कि चारों ओर का वातावरण अचानक अंधकार में हो गया है, मानो आकाश तुरंत काला हो गया हो। ये सामान्य बात थी, क्योंकि ट्रेसलेस युद्धक क्षेत्र ऊपर से लगातार एक जादुई ऊर्जा तूफान से घिरा रहता था, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता था और पूरे युद्धक क्षेत्र में दिन और रात का भेद नहीं रहता था। रॉकी, देखो, रॉकी के थंडरहॉक पर वापस लौटने के बाद वह और लिलिया धनुष पर ही रहे और इस प्रकार उन्होंने कई असामान्य दृश्य देखे जो वे सामान्यतः नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, अभी लिलिया की उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए रॉकी ने दूरी पर एक बवंडर बनते देखा, जिसे देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहले भी बवंडर जरूर देखे थे, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अभी कुछ पल पहले ही उसने उसी दिशा में दो बार देखा था और ये बवंडर नहीं देखा था। यानी अनगिनत धूल उड़ाता ये बवंडर बस यूं ही बन गया था कुछ ही सेकंड में। लेकिन अचानक रॉकी की आंखों के सामने बवंडर बिना किसी चेतावनी के तितर बितर हो गया, पलक झपकते ही गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। इस दृश्य को देखकर रॉकी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने अपना सिर घुमाकर लिलिया की ओर देखा और पाया कि उसकी अभिव्यक्ति काफी हद तक उसकी अभिव्यक्ति के समान थी। जब दोनों आश्चर्यचकित थे, अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी और ऊंचे आसमान से बिजली का एक बोल्ट सीधे मन ऊर्जा तूफान के माध्यम से नीचे गिरा और थंडरहॉक के रक्षात्मक जाल से टकराया। इसके बाद एक कड़कती हुई आवाज हुई जब बिजली डिफेंसिव नेट से टकराने पर फटी, जिससे थंडरहॉक का डिफेंसिव नेट प्रकाश के प्रभामंडल से जगमगा उठा। अच्छे भगवान, डिफेंसिव नेट की चमक फीकी पड़ते देख रॉकी को एक क्षणिक चिंता हुई। ट्रेसलेस बैटलफील्ड का माहौल वाकई वैसा ही था जैसा अफवाहों में बताया गया था, बल्कि अफवाहों से भी ज्यादा गंभीर था। ऐसी परिस्थितियों में अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए उन्हें करीना से पुनः परामर्श करना पड़ा और फिर उन्होंने बेड़े की गति धीमी करने का निर्णय लिया, ताकि अधिक तेज उड़ान के कारण जादुई ऊर्जा तूफान से प्रभावित होने से बचा जा सके। उनकी यह सावधानी स्वाभाविक रूप से अनुचित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र को कम करके आंका। इस समय वे अभी अभी ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र की परिधि में प्रवेश ही कर पाए थे और अब तक जो कुछ भी उन्होंने देखा वह बच्चों का खेल था। असली खतरा अभी भी आगे ताक रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। वास्तव में लगभग आधे दिन बाद ट्रेसलेस युद्धक क्षेत्र के ऊपर से अचानक बिजली का तूफान उतरा, जिसने रॉकी और लिलिया को बिना किसी चेतावनी के कठोर सबक सिखाया। आसमान से अचानक भुजाओं जितनी मोटी बिजली की अनगिनत कड़ियां गिरी। हर बिजली की कड़ियां मानो अपनी आंखें हों युद्धपोतों पर इतनी सटीकता से गिर रही थी। ये बिजली का तूफान मानो मूसलाधार बारिश की तरह था, करीना के दो बेड़े और रॉकी के दो युद्धपोतों को बहा ले गया। वह दृश्य सचमुच अवर्णनीय था। सौभाग्य से करीना के सभी युद्धपोत चौथी पीढ़ी के थे और यहां तक कि टोही जहाज ने भी अपने रक्षात्मक जाल में काफी ताकत बनाए रखी, जबकि रॉकी के दोनों युद्धपोत बड़े प्रकार के थे, जिससे वे इस अचानक तूफान से बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सफल रहे। हालांकि बिजली के तूफान के समाप्त होने के कुछ ही देर बाद, इससे पहले कि हर कोई संभल पाता, अचानक आग की बारिश होने लगी। जादुई ऊर्जा तूफान के ऊंचे आसमान से वॉशबेसिन जितने बड़े आग के गोले गिर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य सीधे युद्धपोतों पर था, जिससे रक्षा जाल प्रकाश के छींटों से जगमगा रहे थे और बमबारी पूरे आधे घंटे तक जारी रही। सच कहूं तो हालांकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था, बिजली के तूफान और आग की बारिश दोनों का सामना करने के बाद सभी थोड़े डरे हुए थे। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि राक्षस भी इस मृत्युलोक ट्रेसलेस रणभूमि में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते, ये जगह वाकई बहुत डरावनी थी। अग्नि वर्षा बंद होते ही करीना ने अपने शून्य जादू कवच का लाभ उठाया और थंडरहॉक की ओर उड़ी तथा रॉकी को ढूंढ निकाला। क्या गार्ड कोर ठीक है? बिजली के तूफान और आग की बारिश का अनुभव करने के बाद करीना की सबसे बड़ी चिंता रॉकी के दो युद्धपोतों के लिए थी, क्योंकि वे दोनों केवल तीसरी पीढ़ी के युद्धपोत थे और यह सामान्य बात होती अगर वे इस तरह के अथक हमले के तहत टिक नहीं पाते। लेकिन सौभाग्य से थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाज दोनों को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, इसलिए रॉकी ने अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, करीना, क्या आप निश्चित हैं कि शैडो अलायंस की खुफिया जानकारी गलत नहीं है? आपका क्या मतलब है? रॉकी के सवाल पर करीना की भौहें तन गईं और बाद में उसने सीधे कहा, ये ट्रेसलेस बैटलफील्ड बहुत ही डरावनी जगह है। क्या तुम्हें यकीन है कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप अपना अड्डा यहां छिपाएगा? कई हमलों के बाद रॉकी खुद को इस शक से मुक्त नहीं कर सका। अब उसने जोर देकर पूछा कि क्या करीना गलत थी। इतनी भयानक जगह, ट्रेसलेस बैटलफील्ड, क्या वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप ने सचमुच यहां अपना अड्डा छिपा रखा होगा? आधे दिन से भी कम समय के लिए ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रॉकी को पहले ही एहसास हो गया था कि यह कितना भयानक था। ये युद्ध क्षेत्र राक्षसों से रहित हो सकता है, फिर भी यह उनका सामना करने से कहीं अधिक भयानक था। और इससे रॉकी के मन में एक सवाल उठा, क्या करीना को धोखा दिया गया था? शैडो अलायंस से खरीदी गई खुफिया जानकारी में दावा किया गया था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप ने ट्रेसलेस बैटलफील्ड में अपना अड्डा छिपा रखा है, लेकिन यहां छिपे ऐसे खतरों के साथ क्या एयर पायलट ग्रुप इतना पागल हो सकता है कि वास्तव में ऐसी जगह पर रह सके? छाया गठबंधन कभी भी झूठी खुफिया जानकारी नहीं बेचेगा। हालांकि इससे पहले कि करीना उनके संदेह का जवाब दे पाती, रॉकी के पीछे से ऑटन की आवाज आए और बोलते हुए वह उन दोनों के पास चला गया। रॉकी, ये कौन है? चूंकि करीना ने पहले कभी ऑटन को नहीं देखा था, इसलिए वह रॉकी की ओर मुड़ी। ये मेरे शिक्षक हैं, मास्टर ऑटन। ऑटन, क्या ये हो सकता है? क्या ये मास्टर ऑटन हो सकता है? ऑटन का नाम सुनते ही करीना ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर वह तेजी से रॉकी की ओर मुड़ी। उसे स्पष्ट रूप से कुछ एहसास हो गया था। इस पर रॉकी ने केवल पुष्टि में सिर हिलाया। रॉकी की ओर इशारा देखकर करीना अचंभित रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रॉकी के साथ इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद होंगे। आश्चर्य के इस क्षण के बाद उन्होंने तुरंत ऑटन की ओर मुड़कर एक दुर्लभ शिष्टाचार दिखाया। मैं करीना हूँ, रोज सिटी की सिटी लॉर्ड। आपसे मिलकर मुझे बहुत गर्व हुआ, सीनियर। हम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करीना ने उसके साथ इतनी विनम्रता से पेश आते हुए, ऑटन मानो अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा था और लगातार सिर हिला रहा था। फिर उसने बेशर्मी से रॉकी को डांटा, बदमाश बच्चे, इस युवती को तो देखो कितनी विनम्र है, और फिर अपनी तरफ देखो, अपने गुरु के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखा रही। मैंने नहीं किया। ऑटन के आरोप से शर्मिंदा होकर रॉकी ने विरोध जताया। उसने हमेशा ऑटन का सम्मान किया था। दुर्भाग्यवश ऑटन ने उन्हें बहस करने का मौका नहीं दिया और सीधे दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यदि शैडो अलायंस कहता है कि एयर पायलट ग्रुप का बेस यहाँ है तो यह निश्चित रूप से यहाँ है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन गुरुजी, ये वातावरण तो रहने लायक ही नहीं है। रॉकी ऑटन के दावे पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि हवाई समुद्री डाकुओं के समूह का अड्डा कोई साधारण गोदाम नहीं था। दरअसल ये लुटेरों का गढ़ था, उनके घर जैसा, जहां वे छापेमारी के बाद छिपते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ट्रेसलेस बैटलफील्ड जैसी जगह पर कैसे रह सकता है? रॉकी के इतना कहते ही ऑटन ने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा और बिना किसी विनम्रता के कहा, बदमाश बच्चे, काश तुमने और किताबें पढ़ी होती। ट्रेसलेस बैटलफील्ड का पहला हिस्सा वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित है। युवती, क्या एयर पायलट ग्रुप का बेस ट्रेसलेस बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में है? हाँ। ऑटन का स्पष्टीकरण सुनकर करीना ने तुरंत सहमति व्यक्त की और एक नक्शा निकाला। उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मास्टर ऑटन, शैडो अलायंस से प्राप्त खुफिया जानकारी ने वास्तव में निर्दिष्ट किया था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेस उत्तरार्ध में छिपा हुआ है, यही। ये सही है। नक्शे पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद ऑटन ने सिर हिलाया। जब मित्र देशों की सेनाओं ने जादुई ऊर्जा तूफान छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें पहले से ही पता था कि हार निश्चित है, इसलिए उन्होंने राक्षसों का पीछा रोकने के लिए तूफान को छावनी के अपने हिस्से में तैनात कर दिया। और हमारा वर्तमान स्थान ठीक उस स्थान के निकट है जहां मित्र देशों की सेनाएं उस समय डेरा डाले हुए थी, इसलिए जब तक हम इस क्षेत्र से गुजरेंगे, जादुई ऊर्जा तूफान का प्रभाव और पहुंच कम होती जाएगी। गुरुजी, क्या तूफान से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता है? हम, करीना के प्रश्न पर कुछ देर विचार करने के बाद ऑटन ने अंततः चर्चा को पुनः शुरू किया। बेड़े को गति देने दो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। क्या? उसका सुझाव सुनकर रॉकी और करीना दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और असमंजस के भाव दिखाई दिए। तुम समझ नहीं रहे हो। उनकी हैरानी का सामना करते हुए ऑटन ने अपना सिर हिलाया और विस्तार से बताया, जादुई ऊर्जा तूफान अपने जादुई हमलों से अपने आसपास से गुजरने वाले किसी भी लक्ष्य पर अंधाधुंध हमला करता है, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में आपने बिजली और आग के गोले का सामना किया था। हालांकि तूफान का निहित मन समय के साथ काफी कमजोर हो गया है और अब प्रत्येक हमले के लिए ऊर्जा संचित करने में उसे काफी समय लगता है, तो अब अपनी धीमी गति से आगे बढ़कर आप अनिवार्य रूप से जादुई ऊर्जा तूफान को ऊर्जा इकट्ठा करने का समय दे रहे हैं। तो ये बात थी। ऑटन के स्पष्टीकरण से रॉकी और करीना तुरंत उसकी बात समझ गए। सावधानी के लिए जानबूझकर धीमा करने का उनका पिछला फैसला जादुई ऊर्जा तूफान के हाथों में खेल गया था। याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। इसके बाद करीना ने ऑटन को प्रणाम किया और अपने बेड़े की ओर वापस जाने के लिए मुड़ी तथा तुरंत बेड़े को पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। करीना के आदेश के अनुसार पूरे बेड़े की गति तेजी से बढ़ गई, और जैसा कि ऑटन ने कहा था, बिजली के तूफान और आग की बारिश के बाद वास्तव में काफी समय तक जादुई ऊर्जा तूफान से कोई हमला नहीं हुआ। लगभग आधा दिन बीत गया और अंततः बेड़ा जादुई ऊर्जा तूफान के मुख्य क्षेत्र से होकर ट्रेसलेस युद्धक क्षेत्र के उत्तरार्ध में पहुंच गया। यद्यपि इस प्रक्रिया के दौरान बेड़े को जादुई ऊर्जा तूफान से दो और हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वे इससे बच निकले, और एक बार जब वे युद्ध क्षेत्र के उत्तरार्ध में प्रवेश कर गए तो उन्हें वास्तव में किसी भी बड़े पैमाने पर हमले का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसी तरह जब बेड़ा युद्ध क्षेत्र के उत्तरार्ध में प्रवेश कर गया तो इसका मतलब ये भी था कि वे वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के गढ़ के करीब थे। वास्तव में वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का गढ़ ढूंढना सभी की कल्पना से कहीं अधिक आसान था, क्योंकि ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के उत्तरार्ध में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जल्द ही एक शहर के खंडहर देखे। होनचेंग खंडहर, यही वह स्थान है। शहर के खंडहरों को देखते ही करीना ने तुरंत शैडो अलायंस द्वारा दिए गए नक्शे पर नजर डाली और फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि शैडो अलायंस द्वारा प्रदान किए गए नक्शे और खुफिया जानकारी के अनुसार वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का गढ़ ये खंडहर थे। हालांकि जैसे ही करीना ने वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के गढ़ की खोज की, होनचेंग खंडहर के टावरों पर गश्त कर रहे लुटेरों ने भी उसके बेड़े को देख लिया। होनचेंग खंडहर में एक इमारत के अंदर, जो स्पष्ट रूप से नवनिर्मित थी, वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का नेता एक महिला के साथ लिपटा हुआ था, शराब पी रहा था और अपने लुटेरों के गिरोह के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के नेता का नाम किलोव था, जो 40 वर्ष का एक व्यक्ति था जिसका चेहरा खुरदुरा था और शरीर विशालकाय तथा मांसल था। डाकू जीवन ने किलोव पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से गहरे निशान छोड़े थे। उसके चेहरे पर चाकू के 3 निशान थे, हर एक उसके कम से कम आधे चेहरे पर था, जिससे वह बेहद खूंखार और डरावना लग रहा था। उसके चेहरे का आभास भी असाधारण था, इस हद तक कि एक झलक मात्र से ही पता चल जाता था कि वह एक हताश व्यक्ति है। सुंदरी, आओ थोड़ा मांस खाओ। अपनी बाहों में जकड़ी महिला को अपने करीब खींचते हुए किलोव ने लापरवाही से चाकू से आधे कच्चे मांस का एक टुकड़ा काट लिया, फिर चाकू की नोक से उस पर वार किया और उसे महिला के होठों के पास ले गया। लेकिन जिस महिला को उसने पकड़ा था वह पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी, वह इतनी कांप रही थी कि अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। लानत है, जब मैं तुम्हें खाने के लिए कहता हूं तो तुम खा लेते हो, महिला का पीला चेहरा मुंह खोलने से इनकार करता देख किलोव ने क्रूरतापूर्वक गाली दी और महिला को एक पैर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, जिससे वह दूर जा गिरी। बॉस, उसके साथ नरमी बरतें। आपने अभी इस महिला को छीन लिया है, वह अभी तक अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है, उसे मत मारिए। अब वह तुम्हारी है, तुम उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करो। बोलने वाले डाकू की ओर देखते हुए किलोव ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और दूसरा तुरंत मुस्कुराया। उसने जो मांस खाने वाला था उसे एक तरफ फेंक दिया और महिला की ओर दौड़ा, उसे उठाया और चला गया। और किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा था, या यूं कहें कि हर कोई ठीक ठीक जानता था कि वह क्या करने जा रहा था। बॉस, हमें वाइल्ड हॉर्स सिटी से एक संदेश मिला है, वे चाहते हैं कि हम तुरंत रवाना हों। हम फायर एल्फ सिटी की ओर जाने वाले किसी भी व्यापारी जहाज को जाने नहीं दे सकते, बिना किसी अपवाद के उन सभी को नष्ट कर देंगे। हम समझ गया। ये सुनकर किलोव ने सिर हिलाया और फिर वह आधा कच्चा गोमांस खाने लगा जो वह उस महिला को खिलाने वाला था। तभी कोई घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, दुश्मन है, दुश्मन। ये सुनकर किलोव ने खबर लेकर आए डाकू की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम गलत समझ रहे हो, हमें ढूंढने के लिए यहाँ कौन आएगा। सर, ये रोज सिटी का एक बेड़ा है। लानत है, रोज सिटी। शब्द सुनकर किलोव तुरंत खड़ा हो गया और फिर चौड़ी आंखों से पूछा, उनके पास कितने जहाज हैं? 30, 40, मादरचोद, उस कुतिया ने वास्तव में अपना रास्ता यहाँ तक पाया। जहाजों की संख्या के बारे में जानकर किलोव ने दांत पीसते हुए गाली दी, फिर अपने चारों ओर खड़े लुटेरों की भीड़ पर चिल्लाया, भाइयों अपने कवच पहनो, सभी युद्धपोतों को हवा में उड़ाओ और उस छोटी कुतिया करीना को मेरे पास लाओ।